ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। वे सभी पुण्यात्माएं हैं जो परमात्मा के इन वचनों को किसी ना किसी माध्यम से सुनते हैं, चाहे कोई वो सीडी सुनते हैं, डीवीडी सुनते हैं, या किसी टीवी चैनल पर सुनते हैं, या परमात्मा के इस सच्चे दरबार में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर के ये वचन सुनते हैं। वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इस ज्ञान को सुनकर जो इसका अनुसरण करता है, इस ज्ञान को ग्रहण करके फिर इसके अनुसार वो कार्य क्रिया करता है, यानी दीक्षा लेता है, फिर आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। गुरुपद सेवे बिरला कोई, जाप कृपा साहेब की होई। गुरु जी की पद माने पद्धति, गुरु जी के द्वारा, सतगुरु के द्वारा बताई गई पद्धति यानी पूजा की विधि के अनुसार जो साधना करते हैं वो परमेश्वर के विशेष कृपा पात्र होते हैं। जो सत्संग सुनते हैं वो भी पुण्यात्मा होती है और सत्संग सुन के जो तड़ फूटती हैं, तिल मिला जाती हैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए और परमात्मा पाने के लिए, और वो दीक्षा ग्रहण करके आजीवन मर्यादा में रह के ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है। आप जी उन विशेष कृपा पात्रों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है। इतनी सर्दी के अंदर और कहां कहां से कितने लंबे सफर को तय करके आप छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर इस दरबार में पहुंचे हो, आपके ऊपर परमात्मा घना प्रसन्न है। अपने आप ही आपको प्रेरणा करता है, आप ही आपकी व्यवस्था करते हैं। किसी के पास कोई भी चीज का अभाव है, धन नहीं है, वो व्यवस्था भी परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहीं ना कहीं से आपको वो व्यवस्था करते हैं और फिर प्रेरित करते हैं और फिर यहां लाते हैं, नाम दिलाते हैं। करे कराव ऐसाइया मन में लहर उठा, दादू सज्जर जीव के वो आप बगल हो जा। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान दिया जाता है, आत्मज्ञान, उसके साथ साथ परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान है कि आप कौन हो और मनुष्य जीवन आपको किस लिए प्राप्त हुआ है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। और परमात्म ज्ञान है परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता है, वो क्या सुख देता है और उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये सत्संग होता है। तो सत्संग में सबसे पहले आत्म ज्ञान कराया जाता है और फिर उसके बाद परमात्म ज्ञान होता है। आत्म ज्ञान ये है कि आप असंख्य युगों से इस काल के जाल में भटक रहे हो, जन्म और मृत्यु की इस फांसी पर लटक रहे हो। जब तक आपकी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी आप सुखी नहीं हो सकते, चाहे सारी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहां वो सुख है ही नहीं 21 ब्रह्मांड में। जैसे नमक की बोरी में और बूरा का टेस्ट आ ही नहीं सकता, ये 21 ब्रह्मांड नमक की बोरी है, बूरा से मिलती जुलती हैं, सेम कलर है, सेम बोरी है, उनका आकार सेम है, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो सकता जो बूरा में टेस्ट है। वो सतलोक के अंदर वो सुख है जिसकी खोज हम यहां कर रहे हैं इस नमक के बोरे में। ये सपने में भी ना सोचना कि आप यहां सुखी हो सकते हो। इन व्यवस्थाओं को पाकर कोई निर्धन सोचता है धनवान हो जाऊं, घना सुखी हो जाऊंगा। धनवान स्वप्न में भी सुखी नहीं है। यहां पर आज किसी के पास मान लीजिए पूर्व संस्कार से कोई संपत्ति अच्छी है, अरबपति है, करोड़पति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या है वो गधापति है, फिर गधा बनकर घूम रहा होगा वहां कुरड़ियों पर। तो ये आत्म ज्ञान है। तीन लोक का राज जीव को जय कोई देवे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से ने। कहने का भाव ये है, परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि ठीक है अपने संस्कार वस्त है, कोई गरीब है, अमीर है, ताकतवर है, बलवान है या निर्बल है, निर्धन है, परमात्मा की भक्ति सबको करनी होगी। और जिसके पास भक्ति नहीं है वो चाहे तीन लोक का भी पति बन जावे, स्वामी बन जावे, कहते हैं क्या बधाई दे रहे उसको, वो तो अंत में दुर्गति को प्राप्त होगा। और एक निर्धन कंगाल भक्ति कर रहा है और वो उस पूरी पृथ्वी और तीन लोक के स्वामी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा वो कीमत का व्यक्ति है। परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र में निर्धन, नाम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि भक्ति करने वाला प्राणी भले ही कितना ही निर्धन हो और उसके घर की छान यानी छत भी टूटी हो झोपड़ी की, और जिसके सोने के महल हो, भक्ति ठीक करता ना हो, तो उसके विषय में परमात्मा कहते हैं वो कंचन महल किस काम के जहां भक्ति नहीं। भगवान परमात्मा कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहां रहता है और कैसी लीला करता है, पर इतनी सी बात होती है सत्संग के अंदर, और इनका विस्तार बहुत ज्यादा बताना पड़ता है क्योंकि अज्ञान घना हो गया। वेद स्वयं बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर, और अपनी महिमा का ज्ञान और अपने पाने की विधि स्वयं ही बताते हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग परमात्मा का होता है और परमात्मा ही बता सकता है। अन्य कोई किसी प्रकार से कोई साधना साधक करके अनुभव करने की चेष्टा करता है तो इनकम्प्लीट ही रहता है, क्योंकि यहां का भगवान जो है, जो यहां का स्वामी है, ये काल भगवान, ये नहीं चाहता कि यहां मेरे जाल में फंसे हुए प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो जाए और उसके पाने की विधि प्राप्त तो बिल्कुल नहीं होने देता। जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हो विश्व में कहीं पर भी सच साधना नहीं है, सच भक्ति नहीं है। इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार ने छोड़कर पूरे विश्व में, अब प्रथम बार कोई व्यक्ति ये बात सुनता है तो वो उसके ये बात अच्छी सी नहीं लगती, उसके गले उतरे नहीं, और जिस समय ये प्रमाण देखोगे सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को स्वयं आंखों से देखकर जानोगे, फिर आप सहर्ष स्वीकार करोगे कि सचमुच इस विश्व में सच भक्ति किसी के पास नहीं है और सत साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता। अब जैसे किसी ने जंडी काटनी हो, एक पेड़ होता जंडी, और उसके काटने का तरीका क्या होता है, एक कुहाड़ा होता है, कवाड़ी पैनी लोहे से बनी हुई, और फिर आरी होती है लोहे के दांतों वाली, उसके स्थान पर यदि कोई काट का हथौड़ा लेकर और उससे काटने का प्रयत्न करे तो कभी नहीं काट सकता। तो यथार्थ जो साधन है उस जंडी के काटने के, वही प्रयोग करोगे तो वह जंडी बहुत आसानी से कटेगी। ठीक इसी प्रकार ये जन्म मरण का रोग रूपी जंडी हमारे जामगी, इसको काटने के लिए वो शास्त्र अनुकूल साधना का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है वर्तमान में। और जिन महापुरुषों ने यह जंडी काटी अर्थात मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने भी यही औजार प्रयोग किए थे जो दास आपको दे रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, दिखा रहा है, और इस तरह जंडी कटेगी, इसी से ये मोक्ष होगा। आज आपको बताएंगे कि परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए आपको प्रमाण भी देंगे और साथ में सत्संग भी सुनाएंगे। किस किस पुण्यात्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सी साधना की, और उनका हमारे सदग्रंथों में भी कहीं प्रमाण है कि नहीं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण मिल जावे वो होगी शास्त्र अनुकूल साधना, और उसी साधना को उन महापुरुषों ने किया हो जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो शंका का कति नाश हो जाता है, फिर बिल्कुल निरसंशय होकर के ये जीव भक्ति कर सकता है। सबसे पहले हमने अपने सदग्रंथों में से चुनना होगा, जानना होगा कि वो सदग्रंथ कौन से हैं जिनको हम ऑथेंटिक मान सकते हैं, जिनको हम आधार मानकर भक्ति कर सकते हैं। वो प्रमाणित सदग्रंथ कौन कौन से हैं उनकी जानकारी पहले देते हैं। एक नंबर पे जो ज्ञान है, जो सदग्रंथ है, वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो अभी मैंने इसी चौथे अध्याय के 25 से लेकर 30 मंत्र तक जो जानकारी आपको बताई है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय करता है और कोई हठ योग करता है, घोर तप तपता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, और सभी के सभी अपनी इस साधना को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक यानी मोक्षदायक। पाप नष्ट होंगे तभी हम मुक्ति पा सकते हैं, कर्मों के बंधन से हम यहां जकड़े पड़े हैं। यदि उन साधकों को ये पता चल जावे कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो वो त्याग देंगे। उनको पता नहीं है तभी तो अपनी अपनी साधनाओं को सब श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं, चाहे कोई मंगलवार का व्रत रख रहा है, चाहे कोई शुक्रवार का, चाहे कोई किसी देव को पूज रहा है या भैरव भूत बतालों को पूज रहे हैं, सभी के सभी अपनी साधनाओं को वो सत्य मान रहे हैं। तो यहां गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि इन धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में लिखी गई है। सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है और वो परमात्मा द्वारा अपने मुख कमल से बोली जाती है। वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो और उनको दंडवत प्रणाम करने से कपट छोड़ के, उनकी विनम्रता से प्रसन्न करने से और सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि जो गीता में मैं ज्ञान आपको धातुम ज्ञान बता रहा हूं, ये कंप्लीट नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है, इसमें वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो सूक्ष्म वेद नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का निष्कर्ष है। ये शॉर्ट में, संक्षिप्त में बहुत कुछ गहरा ज्ञान है। और इसके साथ साथ इस काल भगवान ने इसमें थोड़ी सी अटकल अपना मत प्रवेश करके गड़बड़ी की है, लेकिन वो वेदों से उसकी जांच करके हम इसके मत को रिजेक्ट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 और 9 में ये कहता है कि अर्जुन, यदि तू कर्म सन्यासी हो गया, काम छोड़कर और एक स्थान पर बैठकर हठयोग करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? यानी कर्म सन्यासी मत बन, कर्म योगी बन, यानी काम करते करते भक्ति कर। ये तो है वेद ज्ञान। फिर इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत बताया है। 10 से लेकर 15 तक अपना मत बताया है कि एकांत स्थान पर बैठ जा, नीचे थोड़ा सा घास फूस बिछा, उसके ऊपर मृगशाला बिछा, ना ज्यादा आसन ऊंचा हो ना नीचा हो, अपने नाक के अग्र भाग पर देखता रहे, ऐसे साधना कर। तो ये किसी वेद में नहीं, ना किसी उस तत्व ज्ञान में, क्योंकि ये उसका खंडन है जो तीसरे अध्याय के 6, 7, 8 के अंदर ये कह रहा है कि अर्जुन तू यदि हट करके बैठ गया, तेरा निर्वाह कैसे होगा, गुजारा कैसे चलेगा, तो काम भी कर भक्ति भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरी भक्ति भी कर। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में है कि अर्जुन उसमें कहा है कि ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रमण करो, विशेष कसक के साथ श्रमण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान कर ओम का श्रमण करो। ये तो है ओम यानी ब्रह्म तक की साधना का वर्णन है उसके अंदर वेदों और गीता। और यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो इस शरीर त्याग कर जाता है यानी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ प्राण छोड़ता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, पुनरावर्ती के अंदर। तो प्रसंग चल रहा है, यही सूक्ष्म वेद में बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी वेद वही बताते हैं, सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान गॉड गिवन स्पिरिचुअल जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है वो भी यही कहता है कि काम करते करते श्रवण करो। तो ये मत है, वेद में यही है, सूक्ष्म वेद में यही है, ये यजुर्वेद में यही है। और जहां गीता वेदों का निष्कर्ष है, गीता जी में भी जहां वेद ज्ञान इसने दिया वो बिल्कुल सही है कि युद्ध भी कर मेरा सिमरण भी कर, ये बिल्कुल सही है। तीसरे अध्याय के 6 से लेकर 9 तक इसने सही कहा है कि एक स्थान पर बैठ कर तू हठ योग करता रहा, तेरा पेट गुजारा कैसे चलेगा। तो ये ज्ञान वेद गीता और सूक्ष्म वेद से मिलता है, ये बिल्कुल सही है। जो इसने 6वें अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत प्रोड्यूस किया है वो रिजेक्टेड है, वो नहीं मानने का। तो इस प्रकार हमने इन सदग्रंथों को चुनना है कि कौन से शास्त्र हमारे भक्ति में सहयोगी हैं और सत्य हैं, ऑथेंटिक हैं, जो गॉड गिवन हैं। चारों वेद इस काल भगवान को, ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। उन्होंने दिया तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, ये सूक्ष्म वेद भी साथ था, लेकिन इस बेईमान ने ऐसी गलती करी, जब इस परमात्मा ने वहां से अपने से इसके शरीर के अंदर वो पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इसकी आत्मा में फैक्स कर दिया पूर्ण परमात्मा ने सतलोक से, और उसका निर्धारित समय बना दिया कि इसके बाद ये बाहर आवे आवेगा, जैसे बच्चा गर्भ में होता है उसके बाद उसका निर्धारित समय है कि 10वें महीने वो मां के गर्भ से बाहर आएगा ही आएगा। तो वो इसके बस का भी नहीं था, तब तक यह सृष्टि चालू होली थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म हो चुके थे दोनों तीनों के, उस समय इसके श्वासों के द्वारा, ज्योत निरंजन के श्वासों के द्वारा वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आया। इसने फटाफट उठाकर देखा और पढ़ा। इसने क्या देखा कि इसमें तो उस परमात्मा का बहुत गुड रहस्य है, तो उस पोर्शन का इसने जल्दी जल्दी में नाश कर दिया, खत्म कर दिया। और परमात्मा के डर से इसने कुछ ऐसा अंश रख लिया जिसमें इसके सतर्क की भक्ति थी और महिमापूर्ण परमात्मा की थी। तो वो चारों वेद हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवजी ने फिर जब ये सागर मंथन किया प्रथम बार, तो काल ने उनको समुद्र में छुपा दिया। चारों वेद ऐसे जैसे दूध को जमा करके रड़कते हैं, बिलोते हैं तो मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है, फिर वो लस्सी में मिलता नहीं, सौ प्रयत्न प्रयत्न कर ले। इसी प्रकार वो चारों वेद यानी अपने आप, ये एक ही वेद था, फिर चार भागों में बाद में बांटा गया, वो कंप्लीट ग्रंथ न्यू का न्यू ऊपर आ गया एक सुंदर कमल के फूल पे। और ब्रह्मा जी इसको उठाकर लाए और ब्रह्म इस काल ने दुर्गा को संदेशा भेज दिया कि ब्रह्मा पढ़े इसको। ब्रह्मा ने जैसा ज्ञान समझा वेदों का, उस आधार से इसने आगे अपने अनुयायी पंडितों को, ब्राह्मणों को, अपने बच्चों को, अपने वंशजों को वेदों वाला ज्ञान बताना चाहा, जैसा इसने वेदों को समझा। और जैसा ब्रह्मा जी ने वेदों को जाना वही आज हमारे ब्राह्मण गुरुओं के पास है। अब हम उस विषय पर आते हैं कि ये चारों वेद गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए। इसने जो निकाल दिया वो अलग बात है, जो शेष वेद हैं वो परमात्मा के दिए हुए हैं। तो ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद तो इसने बहुत बाद में दिया है अपने पुत्र को, पहले ये तीन वेद दिए थे, उसमें से भी कुछ पोर्शन अलग से रख लिया था। तो कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद गॉड गिवन हैं और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने वेद ज्ञान दिया है, बोला है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो जो वेदों से मेल खाता है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान वो सही है, और वही सूक्ष्म वेद से भी यदि मेल खाता है तो सही है, और जो इनसे मेल नहीं खाता है, गीता में जो इसका अपना ज्ञान है वो इसके घर का है, वो हमने नहीं मानना है। दूसरा उदाहरण ये है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, अब 37 में तो कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर क्या कहता है कि युद्ध कर अर्जुन, किसी लाभ हानि को छोड़ भूल के और निष्काम भाव से युद्ध कर। कोई बात हुई? पहले तो ये कह रहा है कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू, मर गया तो स्वर्ग में जाओगा, जीत गया तो राज भोगेगा। अब लालच तो आप बता रहे हैं, और फिर उनका सब लालच छोड़कर युद्ध कर, ये इसका डुप्लीकेट ज्ञान है, इस काल का दिया हुआ युद्ध कराने के लिए बकवाद है यार। देखिएगा, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब पहले आपको दूसरा अध्याय का 37 और 38 दिखाते हैं, ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज होगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके उतिष्ठ खड़ा हो जा। और फिर क्या कहे, देखिए काल भगवान का जाल, कहते जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। बताओ ये कोई ज्ञान है? लाभ हानि और जय पराजय को भूल ले, लाभ हानि छोड़कर बेमतलब कौन लठन लठा होगा। इसका अर्थ तो ये हो गया कि किसी के शर्म मारा लठ, अन्य कहते मैं तो बगैर लाभ हानि के और निष्काम भाव से लड़ रहा हूं तेरे साथ में, आ जा। कोई तो क्या ये, और ऊपर कह रहा है कि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए लठ था। तो ये है इसकी बकवाद, युद्ध कराने के लिए ये हमने स्वीकार नहीं करनी, जो श्रीमद् भगवत गीता में। अब आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 6, 7, 8, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 3 है ये, तृतीय अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में क्या कहा है, प्रथम से देख लेते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, मुझे युद्ध क्यों करा रहे हो। फिर यहां अर्जुन पूछ रहा है कि आपके ये दोगली सी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही, मिले हुए से वचनों से, यानी दोगले कहीं जो है विरोधाभास आपके वचनों में आभास हो रहा है, तो ये मिले जुले से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब तीसरे में क्या कहा है, हे निष्पाप, ये भगवान बोला है, ये इतने को भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, इतनी अकल थी, यु काल बोल रहा है इसमें, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है और उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। फिर क्या कहता है, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, यानी ये तो अपनी सोच है, प्राप्त होता और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। आगे फिर कहता, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवर्ष हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। छठे में, जो मूढ़मति मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचार्य और दंभी कहा जाता है। फिर सातवें में क्या कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी तो हट करके बैठ गया तो बाहर से तो दिखाई देगा भक्ति कर रहा है, समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये मन किसी समय भी कोई ना कोई सोचे बिना ये रहता नहीं। अब इसके लिए कहा कि तू काम भी कर, भक्ति भी कर, इस कर्म इंद्रियों को लगाए रख, काम भी कर और भक्ति भी कर। ये देखिए अब कहते हैं, जो इन कर्म इंद्रियों को जो रोक कर चिंतन करता है और वो मिथ्याचारी और दंभी यानी पाखंडी कहा जाता है कि कोई हट करके बैठता है, जैसे ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम, ये राधा स्वामी वाले और अन्य तकरीबन यही गुट्टी पे आवे सबने, कहते ये पाखंडी लोग हैं, दंभी हैं, ये साधना नहीं है भक्ति करने की। देखना सातवें में स्पष्ट कर दिया है कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी कर्मयोग माने काम भी करता है और भक्ति भी करता है, वो श्रेष्ठ है। आगे देखो, अब तीसरे अध्याय के आठवें श्लोक में क्या कहा है। आठवें श्लोक में, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित माने शास्त्रों में वर्णित वो साधना कर्तव्य कर्म कर जो कर्ण योग्य है क्रियाएं, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा है, यानी एक स्थान पर बैठ के हठ योग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह गुजारा भी तो नहीं सिद्ध होगा। हो गया सिद्ध? इस आठवें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि काम भी कर यदि हट और शास्त्र अनुकूल साधना कर, और यदि काम छोड़कर हठियो करके बैठ गया तेरा पेट कैसे भरेगा। ये है वेद ज्ञान। और देखो नौवें में क्या कहा है, इसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान भक्ति कर्म के अतिरिक्त किए जाने वाले कर्म अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस ज्ञान के निमित्त तदार्थ मन उस ज्ञान के नहीं उस परमात्मा पाने के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब ये तो है वेद ज्ञान, क्योंकि सूक्ष्म वेद और यजुर्वेद ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सूक्ष्म वेद यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां मंत्र ये देखिएगा। यजुर्वेद ये देखिएगा, यजुर्वेद ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और यजुर्वेद आर्य भाषा भाषा महर्षि द्वान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और ये यहां से मुद्रित है। अब हम इसके 40वें अध्याय में चलते हैं। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है और ये लास्ट के ही मंत्र चल रहे हैं इसके अंदर। देखिएगा, ये है यजुर्वेद और 4400 यानी 40वां अध्याय 4400 और इसका मंत्र नंबर 15। हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे जोड़ जाड़ का, हिंदी तो आवे अपन या देवनागरी लिपि है। वायु वायुर अनिलम अमृतम अथिदम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किल्बे समर और कर्तुम समर है 15वां श्लोक। इसका क्या अर्थ है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम भस्मांतम शरीरम। इसका अर्थ है कि जब तक तेरा शरीर का नाश हो तब तक अनल माने होती वायु, इस वायु यानी श्वास के द्वारा सेवन करना होता ओम का। तो इसमें क्या बताया कि ओम कर्तु समर किल्बे समर, नीचे देखिएगा, ओम कर्तो समर किल्बे समर और कर्तुम समर। अब देख इस अज्ञानी दानंद का अनुवाद दिखाऊंगा, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था, ये सिर्फ संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान इनके पास था नहीं, जिस कारण से इन्होंने जहन की बुद्धि ने काम नहीं किया, उड़ंगा कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ है कि ओम कर्तु समर, ओम का जाप काम करते करते सिमण कर। अब इसके अनुवाद से आपको और आसानी से सिद्ध होगा कि यो भी कोशिश कर रहा है, अर्थ तो ठीक करने की चेष्टा कर रहा है लेकिन विचलित होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं दे पा रहा। देखिएगा, ये इनका अनुवाद है दानंद जी का। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय, ये ओम लिखा है, ये ओम लिखा है। इसने जैसे ये कर्तु है, कर्तु का अर्थ कर दिया कर्म करने वाले जीव, बिल्कुल ठीक है। और ओम का भी यह अर्थ लिखना था, ओम ही लिखना था। ओम माने ओम, को समर माने समण कर, कल्बे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उनके अपने स्वरूप का समरण माने समरण कर, कर्तव्य माने अपने किए का समरण कर, वायु माने धनजा दिवायु, अनल माने कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता अथ इसके अनंतर इदम इस शरीर नष्ट, शरीरम नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला है, तो ऐसा जान। कोई अर्थ है इसका, कोई सरपैर है इसके अर्थ का? इसका सीधा सा अर्थ है कर्तो माने काम करने वाले। यहां लिखा है ओम कर्तो समर, काम करते करते समण कर, और कल्बे, कल्बे माने किलबलाहट, एक विशेष कसक के साथ तड़फ के साथ उस नाम का जाप करे। और कर्तव्य माने अपने मूल मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करे। तो इसको अंतिम सांस तक, शरीर छूटते तक, जब तेरा शरीर नाश हो तब तक इसका सेवन कर। तो ये वेद ज्ञान है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये देखिएगा, श्रीमद भगवत गीता उठा ली हमने, पवित्र वेद रख दिए। अब इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 का श्रीमद भगवत गीता और श्लोक नंबर 13। हम संस्कृत पढ़ेंगे, परमात्मा ने इसे योग्य कर दिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजनदेहम सयाति परमाम गति। इनका अनुवाद यहां से शुरू होता है, इन्होंने दोनों का इकट्ठा कर दिया, 12 और 13 का, बल्कि अलग अलग होना चाहिए था। यहां से शुरू होता, जो पुरुष ओम माने ओम, ओम माने ओम, इस एक अक्षर रूप, इति एकाक्षरम अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यह अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत मिला दिया, मिलता जुलता सा है। देखिएगा, अब देखिएगा, हम अपने हिसाब से करेंगे इसको। अब 13वां मंत्र है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम माने ओम, इति माने यह एकाक्षरम, ओम इति यानी यह, केवल यही। एकाक्षर माने एक अक्षर, ओम यही ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाता है सयाति परमाम गति, वह परम गति यानी ओम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जो शरीर त्यागते समय तक भस्मांतम शरीरम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 वाला ये ज्यों का त्यों है, यही परमात्मा के सुख संवेद में है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। यानी अंतिम सांस तक राम का नाम जपते रहो। अब कौन से राम का? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी उस अमर लोक को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान रूपी इस अंधकार में इस गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे संसार की रूपी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। अपनी भी साधना करने को नहीं कह रहा। यदि तूने उस स्थान को पाना है, अमर लोक को पाना है, सतलोक को पाना है और जन्म मरण का ये झंझट छुटवाना है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उसी भगवान की भक्ति कर जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब पवित्र यजुर्वेद, पवित्र सूक्ष्म वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में वेद ज्ञान ये एक ज्ञान है, ये बिल्कुल सही है। अब ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है ब्रह्मलोक, इससे पहले थोड़ा सा आपको देवी पुराण दिखाऊंगा। पुण्यात्माओं, आप जी ने बहुत दिन सुन लिए राम कृष्ण और सुदामा की कथाएं, वो तो अच्छी बात है, एक धार्मिक व्यक्तियों को कोई ना कोई सहारा चाहिए था, हम उसमें लगे रहे। लेकिन अब जब बच्चे सयाने हो जाएं तो वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो आजीवन पहली का कैदा नहीं पढ़ना चाहिए उन्होंने, अगर सफलता पानी है तो आगे की क्लासेज भी अटेंड करनी पड़ेंगी, तो वो सतलोक आश्रम बरवाला में उसे आगे की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो सुनिएगा। अब ओम नाम किसका है, ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप संक्षिप्त केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके मुद्रक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, उसमें क्या वर्णन है कि देवी यानी दुर्गा जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और वो कह रही है कि आप मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की, उसका ओम नाम है। ओम नाम का जाप ब्रह्म पाने का उद्देश्य करके करोगे तो आप ब्रह्म लोक में चले जाओगे, ब्रह्म के पास जो ब्रह्म लोक में रहता है। देखिएगा ये है 562 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत। हम नीचे आते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये तो पहले अपने विषय बताती है फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, उसमें किसी भी प्रजा को उसका ज्ञान नहीं है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्मा, इस परमात्मा के द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद रूपी पैमाने से आप इन सभी देवी और देवताओं के ज्ञान के सतर से परिचित हो जाओगे। अब ये देवी जी ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं परम अक्षर कह रही है। देखो, और फिर गीता से प्रमाणित करेंगे आपको कि सर्वपुरुष अलग है, अक्षर पुरुष अलग है और परम अक्षर पुरुष वो सुप्रीम पावर है। यहां देखिए, वही अक्षर ब्रह्म है, देवी जी कह रही है ब्रह्म को, कह रही है ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब हम ज्यादा न करें, यहां के क्या करिए, अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर भेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। अब यहां कहती है उस एकमात्र परमात्मा को यानी ब्रह्म को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी कह रही है मेरी भी पूजा छोड़ दे तू। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। इस आत्मा का, परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और वो कहां रहता है ब्रह्म? वह है, 563 पर पढ़ रहे हैं, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्म लोक में रहता है। ठीक। अब श्रीमद देवी भागवत में देवी जी ने स्वयं बता दिया ओम का जाप कर यह ब्रह्म का मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा, वो वहां रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर है। देखिएगा, ये है श्रीमद भगवत गीता, हमने अब उठा ली, श्री देवी पुराण रख दी। ये 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय और इसका हमने 12-13 पढ़ लिया। देखिए 16 में, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या देता, प्रमाण देता है कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। ये पुनरावृत्ति को स्टार लगा के या नीचे विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावृत्ति उसको कहते हैं जो उसको प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में सदा रहे, आना पड़े वापस। वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ब्रह्म लोक में। अब यहां इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत किया इन्होंने। देखो पुण्यात्माओं, यदि ये ऐसे विद्वान होते तो मुझे क्या जरूरत थी इनके मत्था पचाई करने की। अगर हम इनके इस अनुवाद को श्रेष्ठ माने कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ये कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर फिर किसी का जन्म मृत्यु नहीं होगा, तो गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 3 गलत हो जाते, जिनमें यह कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये खाकनवा दिन का, इसका अर्थ यहां पर यह बनता है कि जो ये नहीं जानते अर्जुन, विद्यते माने विद धातु से बना है विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्यते माने नहीं जानते कि ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावर्ती में है, तो वो लोग मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसका सीधा अर्थ बनता है, इन्होंने गलत किया है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि अर्जुन न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे, न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी तेरी मेरी, तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। फिर देखिए अब 4 अध्याय के 5 और 9 में, ये है श्रीमद भगवत, ये है 4 अध्याय और श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता और अध्याय 4 अध्याय का 5वां श्लोक। अब यहां इसका अनुवाद है, हे प्रंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब देखिए नौ में क्या कहा है कि हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य माने अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता और मुझे ही प्राप्त होता है। अब यू क्या कहता है कि जो इसका सीधा अर्थ है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, यानी और जो इनको नहीं जानता वो मुझे ही प्राप्त होता है, जो इस तत्व से परिचित नहीं है वो मुझे ही प्राप्त रहता है और मेरे और तेरे जन्म मृत्यु बहुत होली है। सीधी सी बात है। अब दसवें अध्याय का दूसरा श्लोक कति कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ये देखिएगा दसवां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, ये यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को प्रभाव माने जन्म को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, सर्वपुरुष है। इसका जन्म परमात्मा कबीर जी से हुआ, एक अंडे में उसके वचन शक्ति से एक आत्मा उसमें प्रवेश हुई, तब ये परमात्मा के वचन से इसका जन्म हुआ। और इस ज्योत निरंजन से और दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश और सब अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो ये कह रहा है कि मेरे जन्म को न देवता जानते ब्रह्मा विष्णु महेश, न ये ऋषि जान सकते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो जैसे पिता की डेट ऑफ बर्थ संतान नहीं जानते, पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादा बता सकता है। तो सबके जो दादाजी, सबके जनक कबीर परमेश्वर जी ने आकर हमें बताया है इसके जन्म को, और जो आज दास ने आपके सामने खोला है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता का जन्म हुआ है और मृत्यु ये स्वीकार कर ही रहा है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता और ब्रह्म लोक में गए हुए सबकी पुनरावृत्ति होती है। तो देवी भागवत में गीता पुराण उस देवी ने स्पष्ट कर ही दिया है कि ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो और वो ब्रह्म लोक में रहता है बस। तो ब्रह्म का जाप ओम मंत्र है, ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट भी कर दिया है। देखिए गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक तक गए हुए सब लोग पुनरावर्ती में हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है। पुनरावर्ती माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे उनको पुनरावृत्ति कहा है। यहां कहा है ना परंतु, हे कौंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है। इसको देखिएगा ये 16वां श्लोक संस्कृत देखें। आ ब्रह्म भुनाथ ब्रह्म लोक पर्यंत लोका यानी सभी लोक उसमें गए हुए पुनरावृत्ति न, वहां गए हुए सभी लोकों में ब्रह्म लोक तक जितने लोक हैं सब में पुनरावर्ती होती है, वहां गए हुए प्राणियों का जन्म मृत्यु होता है। अर्जुन माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते, इसका अर्थ है न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक तक गए हुए सभी प्राणी पुनरावर्ती में, उस जो ये नहीं जानते अर्जुन माम उपेते मुझे प्राप्त, तू माने मुझे प्राप्त होकर भी कौनते पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म होता है। ये इसका यथार्थ अनुवाद है। इनके अनुवाद को यदि माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होते, तो ये तीन गीता जी के तीन श्लोक रिजेक्ट हो जाते हैं। वो सही है, ये गलत है। क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार करता है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, तू नहीं जानता और तेरे भी होते हैं। तो अब हम आते हैं, ये स्पष्ट हो गया कि जो ज्ञान हमारा सूक्ष्म वेद इन सब का एक सबको जांचने का पैमाना है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद आज तक कोई जाना नहीं इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको गिनाता है। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले थे उनको छोड़कर, और उसके बाद इस दास के अतिरिक्त इन गुड रहस्यों को जानने वाला इस पृथ्वी पर नहीं था। और उनको हिदायत थी कि अभी इनको और उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी कि अभी यह सार्वजनिक ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कितबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान और सार नाम को तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये काल के सारे पंथ ना मिटे तब तक इसको छुपा के रखना। और बिचली पीढ़ी यदि ये पहले सार्वजनिक हो गया तो मेरा दास आवेगा, वो कैसे भिन्नता बताएगा। तो सभी महापुरुषों को, नानक साहिब जी को भी यही कह दिया था कि इसको, इस मंत्र को भी किसी को मत बताना। अब ये तो स्पष्ट हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि सूक्ष्म वेद वो तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32, इसको भी थोड़ा निर्णय करेंगे, जिसका चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32, इसमें क्या लिखा है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, यो ब्रह्मणे मुखे, यहां गड़बड़ कर रखी इन्होंने अनुवाद में, कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इन्होंने अनुवाद कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के, यानी ये पहले जो बताए हैं 25 से लेकर, ये 25 से लेकर 30 तक का जो ज्ञान पहले बताया इसने, ये चौथे अध्याय का चौथा अध्याय और 25वें श्लोक से इन्हें शुरू किया है कि दूसरे अपने माने कुछ दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान बलि भारती अनुष्ठान किया करते हैं, कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म अग्नि, ये परब्रह्म नहीं ब्रह्म की पूजा करते हैं, और कुछ आत्म यानी अपने आत्म चिंतन ही करते रहते हैं, और कुछ कान आदि इंद्रियों को रोक राख के संयम कर करके हठ योग करते हैं, कुछ हवन किया करते हैं, कुछ वैसे ही का सब शरीर में शब्द सुनते रहते हैं। और 27 में फिर कहा है कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग में अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ ऐसे कहते हैं कि बस आंख बंद करके बैठ जा और सांस बाहर आ उस पर ध्यान रख, अंदर जाओ उस पर ध्यान रख, ये उनकी साधना है। सांस पर ना ध्यान करेगा तब विवाद आ रहा है, सांस को तो सिमरण करना है उस मंत्र के साथ। तो यहां देखो 28 में क्या कहा है कि कुछ कई प्रकार के द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, जैसे भंडारे कर दिए, कांबड़ बांट दिए, कुछ तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं और कुछ योग करते हैं, केवल योग अभ्यास। जैसे कुछ ये देखो टीवी का ऊपर ऊपर न पैर कर लिए तो लेने स्वर्ग नहीं, देर तो खड़े रहे, को पेट न घुमा घुमा गति, इससे काम लागे रहे हैं कुछ, इससे भक्ति समझते हैं। अब आगे देखो चौथे अध्याय में हम 28वां पढ़ रहे हैं, यहां से योग रूप करते हैं और कुछ अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्तों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। कुछ तो अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्त, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना, सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना, इस तरह की ये जो करते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं और कुछ स्वाध्याय करते हैं, गीता का पाठ कर लिया, वेदों के कुछ मंत्र पढ़ लिए, जप जी की का जाप कर लिया, कति सभी के सभी अपने और दूसरे कितने योगीजन अपान प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी प्राण ये योगिक क्रिया करते हैं, प्राणायाम आदि करके और अपने आप को रिलैक्स महसूस कराते हैं, बस यही भक्ति है। तो ये प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं और अन्य कितने ही नियमित आहार यानी अल्प आहार करते हैं, एक बार खाना खा लिया, सारे दिन में एक रोटी या केवल दूध दूध पी लिया, प्राणायाम प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी सांस मद को देखते रहते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि ये सभी जो क्रिया कर रहे हैं ये अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, इसलिए कर रहे हैं। जब इनको पता चल जाएगा तो डड़े ढो रहे हो तो कौन करेगा इनको, कोई भी जो साधना कर रहा है उसको सही मान रहा है तभी तो कर रहा है। अब आपको पता चला आपने त्याग दी तुरंत, नहीं तो पहले आप इसी ने फाइनल मान रहे थे जैसी भी साधना कर रहे थे, इसका ये अर्थ है। अब 32वें श्लोक पर आते हैं हम, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर 32। इसमें कहा है कि इस प्रकार, इनका अनुवाद पढ़ते हैं, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, नहीं ये लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुख माने मुख कमल से जो बोलता है, ब्रह्मणे माने क्या है ये दिखा, अपनात्मा गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, किसी को भी कख पता नहीं था दत्त मार्ग का, और बने बैठे थे मैं ऋषि मुरलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य, अपना जीवन नाश करा, हमारे पूर्वज डबो दिए, भूत बनवा दिए। अब ये दास बताएगा आपको ज्ञान, देखिएगा अध्याय नंबर 17 श्रीमद भगवत गीता और 23वें श्लोक में, ओए होए, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ है, तिर्विध है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा, 23 नंबर। इसमें अनुवाद सही किया इन्होंने, ओम ओम तत् तत् सत सत, तत् और सत का इन्हें सपने में भी ना पता लग गया। अब ये गूढ़ रहस्य है, आज का जो सत्संग है विशेष होगा आपके लिए। ये ओम तत् सत ये तीन मंत्र हैं किसके, ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, ऐसे ये त्रिविध है तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, सचिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म। अब देखिए यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, उसके पश्चात जो जरा और मरण से छूटने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, तो वो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से और सारे दातों से और सब कर्मों से परिचित है। आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, फिर वो तत्ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञान दाता ने तीसरे श्लोक में आठवें अध्याय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये सातवां अध्याय 29वां श्लोक, ये केवल मूल पाठ है। इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के लिए, माम आश्रिता यतंती ते, मेरा इस ज्ञान का आश्रय कर लेते हैं कि तत्वदर्शी संत को खोज ले। उसके खोजने के बाद ये ते जो खोज लेते, ते माने वे ब्रह्म तत्विदु, तत्ब्रह्म माने उस ब्रह्म को जानते हैं, कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम, के सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। अब इनका अनुवाद देखते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, ये जरा मन लिखना था वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे ते माने वो व्यक्ति तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म तत् माने उस ब्रह्म माने ब्रह्म यानी काल को, संपूर्ण अध्यात्म को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहां अर्जुन ने पूछा, आठवां अध्याय सामने है बिल्कुल, एक श्लोक और बीच में है तीसवां, इसमें कोई विशेष नहीं कहा कि जो मुझे जानते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, बस अंतकाल में मुझे ही जानते हैं और मुझे ही जानते हैं, बस मेरे तक ही उनकी बुद्धि सीमित है। फिर यहां आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, वह तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में दिया है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। अपुणात्माओं, आपकी PhD करवा दूंगा और अंगुलियां बनोट करवा दूंगा सारे शास्त्रों के श्लोक मंत्र, चाहे ब्रह्मा जी और विष्णु आ जियो आपके सामने, चाहे शिव जी आ जियो, सबके ज्ञान में प्रस्त कर दोगे उनको। अब देखिएगा श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 में आगे, इसमें कहा है कि इस प्रकार यानी जो 25 से 30 तक बताया है उससे ऐसे इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, सत्पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसको कबीर देव कहो, वो कबीर परमात्मा सह शरीर सतलोक से चलकर आता। ये वेद बताते हैं कि अपने मुख कमल से वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है जो भगवान खुद बोलते हैं अपने मुख से। और इसमें मूल पाठ में संस्कृति समझ करती है ब्रह्मणे मुखे, मुख माने मुंह मुख, और ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म के मुख से उत्तरित वाणी में धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। देखो अब चौथे अध्याय का 32वां श्लोक आपको 10 अनुवाद करके समझा रहा है, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर के मुख से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू ये कहता कर्म जान, मन इंद्री और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान है। कर्म जान माने परमात्मा जो ज्ञान देगा सूक्ष्म वेद में, वो क्रियाएं काम करते करते करनी होती हैं, शारीरिक क्रियाओं को काम करते करते उसका सेवन और ध्यान भजन करना होता है। कर्म जान यानी मन इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान वो ऐसे होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वता मुक्त हो जाएगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि सूक्ष्म वेद वो है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से सह शरीर आता है गति करके, और अच्छे आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं यथार्थ ज्ञान, और कवियों की तरह आचरण करते हुए वो गूढ़ रहस्यों और गुप्त मंत्रों को आविष्कृत करते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में आपको बताते हैं, ये है गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34। उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलते हैं वो ज्ञान तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से परिणिपातेन, और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, वे परमात्म तत्वों को जानने वाले तत्वदर्शनी वह तत्वदर्शी संत विद्वान ज्ञानी माने विद्वान पुरुष तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्व ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है, वो कैसे आता है ये थोड़ा सा ऋग्वेद को भी साथ लेंगे हम। देखिएगा ऋग्वेद 9-10 मंडल ये इकट्ठे ही अनुवादित है। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और ये यहां से छपा है। अब इसके हम थोड़े से श्लोक पढ़ेंगे, घना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। इसमें क्या कहा है? इसमें यह कबीर शब्द है, ये कबीर लिखते हैं, हम कबीर बोलते हैं इसको। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, उनका नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में यानी तेजोमय शरीर वाले परमात्मा कबीर दे। ये कबीर शब्द है, कबीर हम इसको कबीर बोले, वह को इन्होंने ये अपसर्ग लगा के ऐसा कर दिया, इसका कर दिया सर्वज्ञ कवि बना दिया, और कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कोई कवि आज तक सर्वज्ञ हुआ है? इनकी अकल मारी जा रही है। अब देखना, अब पहले ये निर्णय करते हैं कि जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखो ये यजुर्वेद है, और इसके अपसर घटा कर ये रे यहां लगा दें दो, और वेद अलग कर दें और यजु लिख दें, और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और केवल यजु लिखा हो, तो अनुवाद करता बुद्धिमान उसकी बुद्धि सलप नहीं करेगी, तो वहां करेगा यजुर्वेद लिखेगा। ऐसे ही जहां कबीर भी लिखा है इन्होंने अपसर्ग लगा के, तो इसके अनुवाद में लिखना पड़ेगा कबीर देव। हम उसने कबीर देव के बोले, कबीर देव कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को हम वेद बोलते हैं। किसी का नाम धर्मवीर है तो हम उसको धर्मवीर बोलते हैं, किसी का नाम वेद प्रकाश है तो उसको वेद प्रकाश बोलते हैं। तो यहां सिर्फ एक भाषा के बोलने का अंतर है, और भगवान का नाम वही है। इस यजुर्वेद से करते हैं स्पष्ट आपको, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवादित है, ये देखिएगा, ये है प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये सारा, और ये अनुवादक और ये प्रकाशक। अब इसके आते हैं हम 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 63वां अध्याय 36वां अध्याय, और इसमें मूल पाठ के अंदर एक यजु शब्द है, ये यजु शब्द है। रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है ओनली, ये यजुर्वेद की महिमा है यहां पर। तो यहां पर इस महर्षि दानंद ने ठीक अनुवाद कर दिया। यहां देखो, ये इसी का अनुवाद है। ये लिखता है, वाणी की प्रेरणा को प्राप्त हो मनन करने वाले अंतःकरण के तुल्य यजु माने यजुर्वेद को प्राप्त हो। तो यहां यजुर्वेद की महिमा थी, बेशक यजु लिखा था तो इन्होंने यजुर्वेद लिखना पड़ा। अगर यजु भी लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि उसको समझाने के लिए यजुर्वेद लिखना पड़ेगा कि यजुर्वेद के विषय में कहा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं इस ऋग्वेद के ऊपर। ये वहीं से प्रकाशित, आपको ये यहां से, ये इसके प्रकाशक हैं वही जो, और ये यहां से ये प्रकाशित है। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। ये देखो 26, यज्ञ करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है हुआ, उनके विघ्नों यानी संकटों का नाश करता है, मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। परमात्मा का वहां सतलोक में शरीर की शोभा इतनी है, एक रोम में, एक बाल में, रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है और पूरी बॉडी का कितना हो गया, मनुष्य दृश्य है परमात्मा। तो अगर वो एज इट इज यहां आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते। तो अपने उस रूप को हल्का तेज पुंज का सरल करके और सिंपल बना कर आते हैं, और यही गरीबदास जी कहते हैं, तेज पुंज तन दे धरके इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमें मिलते हैं। अब देखिएगा, अपने रूप को और सरल करता हुआ वह कांति में माने तेजो में शरीर वाले परमात्मा कबीर देव, यह हम इसको करेंगे कबीर देव, कबीर साहब, ये कबीर परमात्मा, कबीर देव लिखेंगे हम इसको, नोट सर्वज्ञ। वो कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय माने वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्माओं को, आदरणीय श्रेष्ठ आत्माओं को वो परमात्मा आके मिलता है। और वो कहां रहता है, देखो यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में स्पष्ट है कि जो परमात्मा धूलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओहो वहां बैठा है वो परमात्मा, साकार है। आगे देखो, अब दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, 82 का, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहां पर है। इसमें कहा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु सोम माने सबका उत्पादक परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, सब पापों का नाश करने वाला है, वह है राजेव, राजेव माने राजा के समान, राजा के समान राजेव, यहां राजेव है, राजेव राजा के, यहां देख लो 269 पृष्ठ पे और ये दिखाएंगे 270 पृष्ठ पे, कोई जो ना कहे जब पृष्ठ गुणा बदल गए होंगे, 270 पृष्ठ पे राजेव माने राजा के समान, ओए होए राजा के समान दर्शनीय है, वो देखण में राजा की तरह है, सिंहासन पर बैठा है। आपने परमात्मा के द्वारा बताई हुई वाणी से धर्मदास जी ऊपर देख कर आए थे, वो कल आपने एक सत्संग में सुना भी था कि वहां परमात्मा का एक सिंहासन है, सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, उसके सिर पर मुकुट है। यही गरीबदास जी कहते हैं, अरस कुरस पर आसमान के अंतिम छोर पर, अरस कुरस पर सवेत गुमज है जहां परमेश्वर का डेरा, कहते सवेत चक्र शर मुकुट विराजे, ऊपर छतर सवेत छतर शर मुकुट विराजे और देखत ना उस चेहरे नु, ये निराकार निराकार कह बकवास कर रहे हैं कि तुमने साधना ठीक मिली नहीं, भगवान वो दिखाई दिया नहीं जिसके सिर पर सफेद छत्र है, सिर पर मुकुट है और सिंहासन पर विराजमान है। यही वेद बता रहे कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है, राजा की तरह बैठा हुआ मुकुट मकट पहनकर, वो देखने में राजा के समान दर्शनीय माने देखने जोग के देखने में उसकी उस प्रकार है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्देमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, ओए होए जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको आकर मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, ओए होए। अब देखियो कितना स्पष्ट कर दिया वेद ने कि जैसे वो परमात्मा कबीर देव, वो सब की रचना करने वाला, पाप नाश करने वाला वो परमात्मा राजा के समान देखने में मनुष्य दृश्य है, और वो वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो मालिक ने कह दिया डगमग नहीं हुए वही उसी तरह चले, जैसे सभी महापुरुषों को कह दिया था परमात्मा ने, जिनको वो मिलते मिले थे कि भी इस ज्ञान को अभी छुपा के रखना, इस नाम को कहीं बताना नहीं किसी को, अपने अनुयायियों को। तो इन सभी महापुरुषों ने कति गुप्त कर दिया, लिख दिया, लेकिन आगे छींट नहीं लगने दी। ये दृढ़ भगत थे, इनको गवाह बनाया। तो यहां ये स्पष्ट हो रहा है कि वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली, आकाश की बिजली और कोई धातु विशेष पर गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन होता है। पुराने समय में हम छोटे छोटे थे, जब कभी वर्षा होती थी, बिजली कड़कती थी और बाहर कोई बर्तन रह जाता था आंगन में, उसमें काशी धातु के थाली बेले गिलास कटोरे होया करते थे, काशी धातु के। अब तो वो रहे नहीं, कांसी धातु के बेले थाली रहते थे और कांसी धातु पर बिजली विशेषकर गिरती थी। तो हमारी दादी जी कहती थी कि इनको अंदर रख लो ना तो बिजली गिर जाएगी इन पे। तो यहां क्या बता रहा है कि जैसे बिजली, आकाशीय बिजली एक अपने स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है, ऐसे ही परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो उसके प्रिय होते हैं, जो उनके मिलन योग्य होते हैं, उन्हीं महापुरुषों को आकर भगवान मिलता है। जैसे बिजली गिरती है उसी स्थान पर, उसी धातु पर जिसका उसके प्रेम है, लगाव है, जो उसके अट्रैक्शन है। तो उन महापुरुषों को किन किन को मिले परमात्मा, उन दृढ़ भक्तों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मनुखदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव चुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला बागपत बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। और वो परमात्मा आते किस लिए हैं ये देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 हम पढ़ रहे हैं। इसका मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया, अब 2 पढ़ेंगे। हे परमात्मन, आप किस लिए आते? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओए होए, तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, ओए होए। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत स्पीड से हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं, और आप कबीर देव हैं, इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, बठा बठा दिया। आप कबीर साहब हैं, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप हमको सुख दें, प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए आप शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। स्पष्ट हो गया कि आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं और ज्ञान उपदेश देने के उद्देश्य के लिए ही आप यहां मिलते हो, आते हो। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के और मंत्र नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में यहां क्या लिख रखा है, पर कबीर देव ये स्पष्ट लिखा है, कबीर देव ये कबीर परमेश्वर, कबीर देव इसका अर्थ इन्होंने क्या है, वह परमात्मा कबीर देव मैं दावी कर दिया कबीर का है, और देव देव वित्ते कर दिया, पर कबीर देव वित्ते अयो वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, इसका सीधा अर्थ है। विद्वानों की तृप्ति के लिए यानी भक्तों के लिए, विद्वानों को ज्ञान से तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है, वह सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में त्रस्कृत करता है, उनका छक्के छुड़ा देता है परमात्मा। और वो कौन है, वो कबीर देव है और ज्ञान देता है उन विद्वानों को आकर के। तो क्या सिद्ध हुआ, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को सिद्ध करने के लिए अब इतने ढेर सारे प्रमाण वेदों के बताने पड़ रहे हैं कि वहां किस लिए बोला गया, ये सब ये कोड वर्ड है और कोड वर्डों को अध्यापक जान सकता है, टीचर जान सकता है, बालक नहीं जान सकते। तो ये जितने अनुवाद करता थे ये बालक थे, आज तक ऋषि वह ऋषि वर्मा विष्णु महेश तक के भी बालक थे इस भक्ति मार्ग में, ये सत्कर मान लेना, आज सबके स्पष्ट हो जाएगा ये बात। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 54 और सूक्त नंबर 3 में आपको दिखाते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 और इसके मंत्र नंबर 3 में, ये 3 नंबर मंत्र है, सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम देव, सोम स्वभाव वाले और जगत प्रकाशक वह परमात्मा जगत प्रकाशक है और विश्वानी पुनाने सबको पवित्र करता हुआ भुवनो उपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग माने ऊपर में भी नहीं वहां पर बैठा है, तिष्ठति माने विराजमान है, उन्हें बैठा है सब भवनों के ऊपर, सबके ऊपर स्वर्ग सतलोक के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वहां बैठा है ठीक। और वहां से ये गति करके आता है, ये आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट कर दिया कि वहां से चलकर आता है। और इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में भी, 1 में भी स्पष्ट हुआ। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का, हाय हाय अब ये देखिएगा 94 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 का और मंत्र नंबर ये यहां देखिएगा 1, इसमें है कि सूर्य के विषय में जैसे रसिम प्रकाश करती हैं उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय में करती हैं। यहां सीधा अर्थ यहां है कि वह परमात्मा जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान सब बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ और पवते मन सबको पवित्र करता है, कवियन कवियों की तरह आचरण करता हुआ, ये लिख रहे हैं कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट दृष्टत्व पद के लिए वर्जम ने इंद्रियों के अधिकरण मन के समान अटबट खट और जो अधिकरण रूप है वो सिरे धाम है, बकवास करे। सीधा अर्थ है कि वो कवियों ने वर्जम, वो कवियों की तरह घूमता फिरता जाता आता रहता है, आचरण करता है और तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वर्ज माने जाना घूमना फिरना होता, कवियों की तरह भोगता घूमता फिरता है, नहीं ये भी स्पष्ट कर दूं आपको। अब वर्ज माने क्या होता है ये भी बता दे। पुण्यात्मा आप तो कति बालक हो, हमने तो आज तक ये मंडी मसाणी पूजी थी, जय गणेश देवा या हनुमान चालीसा पढ़े थे, ये वेद सुने सुने थे, देखे नहीं थे आज तक। और आज आपके उंगलियां पर करा दूंगा, याद करा दूंगा आपको और स्पष्ट कर दूंगा हु इज गॉड। परमात्मा कहते हैं नोमन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ जाने दूजी बार। तो ऐसा सुलझा दूंगा अभी से उड़ जा नहीं सकता, कलियों के अंदर सब पार होंगे जो भक्ति करेंगे। अब देखिए ये है एक डिक्शनरी है, शब्दकोश, हिंदी संस्कृत हिंदी कोश, ये है वामन शिवराम आपटे, ये इसके संग्रह करता है और ये यहां से छपा है। और अब हम इसके चलते हैं 993 पृष्ठ पे। यहां पर वर्ज शब्द है, वर्ज, वर्ज माने जाना चलना प्रगति करना है, और विदा होना, ये जाना अर्थ जाना है, जाना चलना प्रगति करना। और यहां देखना कि घूमना फिरना, वर्जनम माने घूमना फिरना, निर्वासित देश निकालना, यात्रा करना। वर्जन वर्जम माने वर्जम वर्जनम माने घूमना फिरना भी होता है, जाना होता है, आना नहीं होता इसका अर्थ। अब देखिएगा हमने ऋग्वेद फिर पढ़ रहे हैं, वह शब्द कोश रख दिया, हम ऋग्वेद पर आगे हैं। और पृष्ठ नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के हम मंत्र नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। ये मंत्र नंबर 1 है, इसमें यहां इन्होंने अनुवाद में गड़बड़ करी है, कवियन वर्जम ने, ये इकट्ठा ही करना था अर्थ, वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ वर्जम माने घूमता फिरता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने कबीर वाणी के जब शिशु रूप में प्रकट होता परमात्मा, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है यानी उस दूसरी प्रकार की जो लीला करता है प्रत्येक युग में, तब जो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है। इससे पहले आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर 2 और दिखा देता हूं, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर ये 2 क्या कहता है। वह है पूर्वोक्त परमात्मा, वो पहले जिसके विषय में कहा गया है साक्षात्कार को प्राप्त हुआ वाक द्वारा, वाक माने वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग को, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है, अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर उस मोक्ष मार्ग को बताता है। वह जिसके विषय में पहले बताया जा रहा है वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो, यानी यहां प्रगट होकर, सज्जन माने अपने यहां प्रगट होकर अपनी वाणी के द्वारा, वाक के द्वारा मुक्ति मार्ग को प्रेरणा करता है, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। और क्या बताया है, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए के लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा गुहानी माने गुप्त नामा आविष्करणोती, वो गुप्त नाम यानी गुप्त मंत्र, वो गुप्त नामों को का आविष्कार करता है, इन नाम संज्ञा कर दी एक तरह के वो गुप्त नाम का नाम लिख दो को प्रकट करता है ओए होए। और वाणी रूपी यज्ञ के लिए सिद्ध सदा स्पष्ट कर दिया कि अपने मुख से वो बोलता है, अपनी वाक द्वारा वाणी द्वारा बोलता है और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा गुप्त नाम नाम आविष्करोति नाम को का आविष्कार करता है, प्रकट करता है। और परमात्मा कहते हैं जिस नाम को कोई नहीं जानता उन नाम भक्ति के नामों को मोक्ष के मार्ग को उस नाम को स्वयं आगे बताता है। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब सो हम शब्द हम जग में लाए सार शब्द हमने गुप्त छपाए। आज तक सोहम मंत्र किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं, किसी उपनिषद में नहीं, किसी गीता में नहीं, तो ये सिद्ध हो गया कि वो कबीर नामक परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है और अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान का प्रचार करता है और गूढ़ रहस्य और गुप्त मोक्ष मार्ग को उन मंत्रों को भी वही आविष्कृत करता है, वही उसको सार्वजनिक करता है, उनकी खोज करके हमें देता है। इति सिद्धम कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ और फाइनल है। अब उस परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान और वो मोक्ष मार्ग क्या है, स्पष्ट हो गया, वेदों से प्रमाणित हो गया कि कबीर देव कबीर साहब वो परमात्मा है जो अपने मुख कमल से वाणी बोलता है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी यही स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सब देवों का देव सर्वसृष्टि नचनहार परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान में जो लिखा है वो फाइनल है। और उस तत्व श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 को थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, इसी से संबंधित है। अब इसमें क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी साथ बताई है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 15वां अध्याय ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला अधः शाखम नीचे को शाखा वाला अश्वत्थम प्राहु अवम ये संसार रूपी पीपल का यानी वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित उसकी जो छंद हैं विभाग हैं वो पत्ते आदि शाखा मूल और ये पत्ते आदि उसकी शाखा हैं विभाग हैं उसके खंड हैं उनको जो तत्व से अलग अलग जानता है वो वेदवित है। वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के अनुवाद में ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले अधः शाखम ये गलत किया इन्होंने। अधः माने नीचे को शाखा करना था। देखो ये 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अधः और अधः दो बार लिखा है, इसका अनुवाद यहां किया इन्होंने। अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, बिल्कुल यहां ये विचलित हो गए क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गई है को नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मानकर सारी गीता को वहीं गोड़कर धर दिया, अड़ंगा कर दिया। देखो पुण्यात्माओं घी है, चीनी है, सारा कुछ रखा है, आटा है, और जिसे ना हलवा नहीं बनाना तो गोबर कर दे उसका। इबदास को भेजा हलवाई बना के, ईसा बना दूंगा खाओगे रंगली चाटोगे। ये देखिएगा इन सदग्रंथों में क्या रहस्य भरा है कि ऊपर को जड़ ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, सीधी सी बात है। ये देखिएगा ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये एक संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानिए देखिएगा। ये है ऊपर को जड़ ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना हिंट दिया कि ऊपर न जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सारे विभाग बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे जैसा वेद बताते हैं गीता बताती है कि अपने मुख कमल से वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं, सूक्ष्म वेद बताते हैं, वो गुण रहस्य बताते हैं, तो उसमें वो एक संत की भूमिका भी करते हैं और कवियों की तरह वो वाणी बोलने के करके एक प्रसिद्ध कवि की भी पद भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। तो 600 वर्ष पहले भगवान ने स्वयं बताया था एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कहते अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डारे, तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। परमेश्वर स्वयं आकर बता गए थे 600 वर्ष पहले इस गीता के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में कि ऊपर को जड़, अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं, और मूल बतानी छोड़ गए भगवान, क्योंकि यहां कोई अधिकारी आ जाता है, मंत्री आके खड़ा हो जा, वो कह दे मैं फलाना मंत्री हो, मैं ठीक है खड़ा रहे होगा, और उसके साथ कोई गनमैन और आ जाने का टियो भाई मंत्री जी आए हैं, अच्छा आओ जी बैठो जी। तो इसलिए परमात्मा ने अपने को छुपा कर रखा, हरिदास को भेज दिया कि सारे राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति आगे कबीर भगवान, सब भगवानों के भगवान, सब देवों के देव, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नी भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सर्जना। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये एक पेड़ है, ये एक वृक्ष है, ये अब ये बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है वाई पात रूप संसार। ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, और ये है कौन ये देखिएगा, ये अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया युका सीमा है कबीर हुआ। अब ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। अब 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में क्या बताया है कि गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया कि ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार की वृक्ष है। उसके बाद उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि यहां मैं क्लियर नहीं बता सकता क्यों मैं नहीं जानता उसके विषय में, देखिएगा। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा जो इनको समझ लेगा। ये 15वां अध्याय और ये प्रथम मंत्र, ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों रूप नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष जानो, और जिसके विभागों सहित जो बता देगा यह तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। इनकी भाषा पढ़े, आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ समझो, ऊपर को जड़ होता आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये बिल्कुल ठीक अनुवाद किया उन्होंने। अध्यय शाखा यहां विचलित हो गए, ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाला नहीं, तीनों गुण रूपी शाखा वाला, अश्वत्थम पीपल रूपी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद छंद माने वेद बता दिया नहीं, उसके विभाग हैं पत्ते आदि उसके विभाग हैं कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत आज के जीवन। अब इसमें लास्ट सर्व इतना पढ़ेंगे हम, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। अब 3 मत ये कह दिया है कि उस सुदृढ़ मूलम यानी उस दृढ़ मूल वाले अमर लोक रूपी परमात्मा के उस ज्ञान को दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण इन्होंने विराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब चौथे पंद्रहवें अध्याय का चौथा श्लोक, ये यहां अनुवाद है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्व ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से होए पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, जो सबका सृजनहार है, ये देखिएगा, उस हुई है उसी आदि पुरुष परमेश्वर, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का परपदे माने पूजा करनी चाहिए। सीधी सी बात, मनन ध्यान नहीं, परपदे माने उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी नहीं, उसकी पूजा कर। यदि तूने उस पूर्ण परमात्मा के उस परम पद को प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अब वो कौन से मंत्र हैं? अब तक तो आपको कौन भगवान है और कौन से प्रमाणित शास्त्र हैं, वो परमात्मा कहां रहता है और वो कैसी लीला करता है, ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा जो ज्ञान देता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और यदि उस ज्ञान से वेद और गीता मिलती है तो सही है, वो उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उनसे हटकर जो ज्ञान है, पुराणों में जो ज्ञान है, वो ऋषि विशेष का अपना ज्ञान है। उपनिषद क्या है? जैसे कठो उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, वो मांडुक्य नाम के ऋषि ने जैसी साधना करके डड़े ढोके जो अनुभव किया, उसने जो लिखा, वो उसका अपना अनुभव है। यदि वो वेद ज्ञान से नहीं मिलता तो वो उसके घर का है, यूजलेस है। इसी प्रकार जैसे सत्यार्थ प्रकाश, इस नकली में ऋषि दानंद ने अपनी सारा अनुभव उसमें लिख दिया, और यदि इसकी ईब पोलना पाठ दी तो ये उपनिषद का रूप धारण कर लेता, वेदों को भूल जाते लोग कुछ दिनों में। तो ये वेद ज्ञान से जो नहीं मिलता वो उसकी अपनी सोच है, वो गलत है, यूजलेस है, व्यर्थ है। अब सिद्ध कर दिया कि सूक्ष्म वेद इज कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, सब वेद बताते हैं, श्रीमद भगवत गीता बताती है कि वो स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो कंप्लीट गॉड ही आकर बताता है अपने मुख कमल से। अब आपको दिखाते हैं, अब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चमीन के फेरा मोतिया विंद्रे। ये राधा स्वामी पंथ वाले परमेश्वर की वाणी को आधार मान के ज्ञान प्रचार सतलोक सचखंड के गीत गाया करते थे। उसमें एक शब्द है भगवान का, परमात्मा कबीर जी का, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके अंदर कंप्लीट नाम लिखे हैं ये, जो मोक्ष मार्ग के प्रथम सतर के प्रथम मंत्र, लेकिन दो नाम छोड़ गए। तो उस परमात्मा ने थोड़ा सा गुप्त रखना था जो अब तक छुपा के रखना था, फिर भी बहुत कुछ उससे क्लियर है। और इन्होंने परमात्मा कहते हैं ना कि गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे ये जग जुगता ढेल रे। अब देखिएगा एक संत मत प्रकाश भाग एक है राधा स्वामी वालों का, इसमें कबीर जी परमेश्वर का एक शब्द है, संत मत प्रकाश भाग एक, और ये महाराज सावन सिंह जी के वचनों का संग्रह है। ये इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र शेट्टी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, ये यहां से प्रकाशित है, 1958 से चल रहा है, 1958 में पहला संस्करण हो। भट्ठा बठाने वालों आज तक ये डंगा पढ़ा रहे हमारे थे, ये मुद्रिक ये सारा ये यहां से छपा है, अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके 15 शब्द पर 15 पृष्ठ पर देखिएगा, ये देखो वाणी कबीर साहिब की। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवारा है भ्रम से न्यारा है, हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है, दो तीन नीति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। देखिएगा मूल कमल चतुर बखानो और किलियंग जाप लाल रंग मानो, यहां परमात्मा ने किलियम को किलियंग लिख दिया, योड़ पुड़ दोए रे। अब कोड वर्ड तो उसका दास बता सके है, जो भगवान का दास होगा। इन बड़का समझाओ, ये देखिए इन्होंने यू जाप पहना दिया किलियंग, किलियंग जाप लाल रंग जाप मानो, देव गणेश ताप रोप्य थानो, गणेश देवता है और रिद्ध सिद्ध तंवर ढुला रहा है। ठीक स्वाद चक्र सट दल विस्तारो और ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो और तहा शब्द ओंकारा, ये ओम शब्द है ओंकार नहीं। अब छह दल का जो कमल है वो ब्रह्म और सावित्री का है और उसमें ओम नाम है। ठीक फिर बताया है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, और हरियम, ये हरियंग नहीं हरियम है, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। पांचवा द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द या सोहंग था, इन्होंने यहां सोहम क्यों लिख लिया, थोड़ी सी समझ में आएगी इनके सोहंग। ये देखो परमात्मा ने सोहंग लिखा था, लेकिन वास्तव में ये हरियम है, ये सोहम है। सोहम शब्द तहा दुन छाई, गन करे जय जयकारा है। फिर सातवें में कहा कि हरिहर वर्मा चवर ढुराई, ता शरिंग ना सोडस दल कमल कंठ के माही, सोलह पंखड़ी का दल कंठ कमल में है, ताते मत बसे अविद्या भाई, हरिहर वर्मा और चवर ढुराई, वह शरिंग नाम उचार, ये शरियम है शरिंग नहीं है, तापर कंज कमल है भाई, बंग भौर दो रूप लिखाई, ये सारा कुछ मालिक ने बता दिया। यहां ये सूक्ष्म वेद में ये सारे नाम बता दिए जो आपको सबसे पहले दिए जाते, ये पांचों नाम हैं। पहले ये पांच नाम ही दिया करते थे भगवान ने, ये आदेश दिया था। अब ये कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा कहा है, जैसा कि आपको कबीर सागर में दिखाया है कि बारहवें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, और उस गरीबदास पंथ के मैं आगे चलकर मैं आऊंगा उस सारे ज्ञान न सुलझाने के लिए। ये दास बेच दिया भगवान ने, आयत है उसमें क्या लिखा है, आप देखो इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते ये, और इस शब्द को तो राधा स्वामी पंथ वाले कति आधार मान कर चल रहे थे, और उससे का आधार से अगम लोग अनामी लोग सारे उन्होंने सुन रखे थे। तो उसमें क्या लिखा है लास्ट में पढ़ेंगे हम, जो अपने मतलब का आज हमारे विषय में जो संबंधित है, ये लास्ट की 24वीं कली में है, 32 कड़ी है इसकी। सोहम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महाजिकाई, जहां जा को वार न पा रहा है। अब पहले परमात्मा ये सारी रचना बताते हैं सतलोक की, फिर ये बता है कि ऐसी ही नकल इस काल ने इस पिंड में कर रखी है, ब्रह्मंड में, इस शरीर के अंदर जो तुमने सुनता दिखता है ये तो इस काल व्यवस्था है और ये इसकी नकल कर रखी है। आगे देखो सोडस बानो हंस को रूपा, सतलोक में जीव का आत्मा का 16 सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है, और बानी सतधन बजे अनुपा, हंसा करत तवर सिर भूपा, वहां जाकर सभी भक्तात्मा परमात्मा भूप माने राजा के समान बैठे भगवान के सिर पर चंवर करते हैं, सब नीचे से मुक्त होकर गए हुए प्राणी। और सतपुरुष दरबारा है, वो परमात्मा का दरबार है, परमात्मा राजा के समान है भूप। 26 में कोटि भानो उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई, करोड़ सूर्य भानु माने सूर्य और इतने चंद्रमा, मिला दे। पुरुष रोम सम एक न हुई, परमात्मा के बाल के समान भी नहीं है। ऐसा पुरुष दीदारा है भगवान का, ऐसा दर्शन है। फिर क्या बताया है, आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक, और फिर अलख पुरुष की ता ठुकराई और अरबन सूर रोम समनाही, उसके एक रोम के अरब सूर्यों का प्रकाश है। तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष तहा को राजा, और खरबन सूर सूरज की, सूरबन सूरज की, उसके एक रोम बाल की शोभा खरब सूर्य जितनी है। तापर अकलोक है भाई, पुरुष अनामी तहा रहाई, और जो पहुंचेगा जानेगा वही, वो कैन सुनते न्यारा है, उसको नहीं बताऊंगा जो अकलोक है अनामी लोक। अब तीस में क्या कहा कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ओए होए, अब परमात्मा कहते मैंने जो ऊपर बताया ना ये ऊपर है, लेकिन इसने नकली इस पिंड में शरीर में भी इस ब्रह्मांड में भी बना रखा है, और ब्रह्मांड का ही सारा चित्र शरीर में दिखाई देता है। जो इसमें तुम धुन सुनते हो ये काल की धुन है, इससे पार है वो धुन जो वास्तविक धुन, इससे बाहर है। देखो अब क्या कहते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, होय होय, माया दुर्गा अवगत का जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। फिर क्या बता है, आदि माया की नहीं चतुराई दुर्गा ने, और झूठी बाजी पिंड दिखाई शरीर में ब्रह्मांड में दिखाई, और कहा कि अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमात्मा की ऊपर ऐसी रचना, और वो इस पिंड अंड में। अब जैसे अब देखिएगा कि ब्रह्मांड क्या है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, और इसकी सेफ जो है एलिपिकल है, अंडे कैसी, इसको अंड भी कहते हैं, ये ऐसी है, ऐसे अंडे जैसी, और यही इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, और इसमें जो कुछ अब सारा शरीर में दिखाई देता है इसकी, इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं, शरीर को पिंड कहते हैं। अब देखना इसमें कैसे झूठी रचना कर रखी है, ये एक ब्रह्मांड है। अब नीचे ये सात लोक है, तल अतल अवतल पाताल ये सारे, और ये पृथ्वी लोक, ये शिव का लोक, ये विश्व ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग और नरक, ये धर्मराज का लोक है, ये सपतपुर, ये एक ब्रह्म लोक है, ये ब्रह्म लोक जहां ये काल रहता है, ये इतना ब्रह्म लोक है, इतना ये ब्रह्मलोक है, और यहां परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, इसको किसी को नहीं पता, और ये त्रिकुटी पर आकर परमात्मा यहां त्रिकुटी पर आकर के यहां एक बहुत बड़ा शहर सा बना हुआ है, और यहां आकर के ये सब रहते हैं। परमात्मा का भी यहां एक ऑफिस है, कार्यालय दरबार है। तो इस ब्रह्मलोक में ये है ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है, जहां दुर्गा पुराण में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाते हो ब्रह्मलोक में रहता, ये हो ब्रह्मलोक, इसको महास्वर्ग भी कहते हैं। यह देखिए, ये महान इंद्र का द्वीप, यानी ये महास्वर्ग है, इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अनामी लोक, इस काल ने दुर्गा के द्वारा धोखा देने के लिए इस पिंड में अंड में ब्रह्मांड में बना रखी है, ये इससे क्लियर हो। और परमात्मा इससे पार है, ये देखिएगा, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में तीन मंत्र हैं, ओम तत् सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष का, यानी पूर्ण परमात्मा का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के 16वें श्लोक में दो पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके बारे में कहा कि दोनों नाशवान हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, जीवात्मा तो किसी की मृत्यु नहीं, वो तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ति अवैश्वर, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो इनसे अलग है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविदः स्मरते नथी गर्स, उस परमात्मा के पाने का केवल तीन मंत्र का जाप है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, और यही परमात्मा इसमें बता रहे हैं और सभी संत प्रमाणित कर रहे हैं। अब आपने ये देखा एक ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, ये देखिएगा, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, अब ये ब्रह्मांड, अब ये समझो एक, इसके 21 ब्रह्मांड है सर्पुरुष के, ये देखिएगा, अब ये स्थिति आ गई। इसके ये एक गेंद सी हो गया ब्रह्मांड, समझ लो ये पांच ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बनाया इसने। ऐसे इन चार महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक दिए और एक ये अलग रखा इसने अपने अलग से, ये 21 महाब्रह्मांड है। और इससे पार होकर आगे जाते हैं सतलोक में, ये जैसे इस ब्रह्मांड में यहां एक स्थान है, ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र आपको दिखा था, ये है वो ग्यारहवां द्वार, ये है ग्यारहवां द्वार, ये सुराख है ग्यारहवें द्वार का। अब ये ब्रह्मांड आगे यहां पर, ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ये आ गया, ये है ऐसा ही यहां पर है, ये सुराख है, ये दिखता नहीं इसमें ऊपर, ये अक्सर देखा गया, ये है, ये सुराख है ग्यारहवां, और ये ग्यारहवां द्वार फिर इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। अक्षर पुरुष का लोक में ये सोहम जाप इसका है, अक्षर पुरुष परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष को इसका, इसके बाद सोहम हद तजी जब भाई, सोहम यानी अक्षर पुरुष का स्थान छोड़कर हम इस बार में द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे, देखिएगा। तो ये है वो ओवरऑल कंट्रोल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सौर्य ब्रह्मंडों का मालिक, ये तो अक्षर पुरुष का थोड़ा सा लोक, ये सर पुरुष का, ये अक्षर पुरुष का 21 ब्रह्मांड का इतना, और ये सारा ये सबके ऊपर मालिक, और ये वो कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म, ये सतलोक है। अब हमने यहां पहुंचना है, इसके 21 ब्रह्मांड को छोड़ना है, इस 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए हमने प्रथम मंत्र और ओ मंत्र जो सतनाम के अंदर एक मंत्र है वो इसको देंगे सारी कमाई, उसमें दो मंत्रों की कमाई हमारे साथ रहेगी, पहली और दूसरी। फिर जो सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है ओम के अतिरिक्त, उसके कमाई हम इस अक्षर पुरुष के लोक से पार करने के लिए 21 सात संग ब्रह्मंडों की दूरी पार करके इसके क्षेत्र से गुजरेंगे, इसका टोल टैक्स देना हमने। और फिर जो सार नाम की कमाई से हम इस बर्मा द्वार पार करके और सतलोक में प्रवेश करेंगे, अपने धनी के पास चले जाएंगे जहां से हम आए हैं। अब जो हम पढ़ रहे थे इन नकलिया ने वो भी ना समझ माया पढ़नी बिना यज्ञ परमात्मा की वाणी देखिएगा। अब हमने ये संत मत प्रकाश भाग एक उठा लिया, अब इस संत मत भाग प्रकाश हमने एक उठा लिया, ये सावण संत जी के ये जो प्रवचन है इसके अंदर संग्रह किए हुए, ये सारा वही है, ये पहले जो आपको दिखा रहे हैं, ये 1958 से चल रहा है ये आए है। और इसमें अब देखिएगा हम जो पढ़ रहे हैं कन्नैनो दीदार महल में प्यारा है, हम यहां तक आ गए। कहते हैं आदि माया किन्नी चतुराई है, है। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा है, है। माया अवगत जाल पसारा, सो कारी गर्भारा है, आदि माया किन्नी चतुराई, जूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची अंड माही, इस ब्रह्मांड में अंड आकार स्थान में, और ता का प्रतिबिंब डारा है, उस सतलोक में भी ऐसी है, और जो इस शरीर के अंदर तुम धुन सुनते हो या कोई देखते हो, ये काल का जाल है, ये नकली है, डुप्लीकेट है। देखो आगे, अवगत रचना रची अंड माही, परमात्मा वाली रचना यहां झूठी रचके और उसका प्रतिबिंब उसकी नकल यहां पर डाली है। फिर क्या कहा, शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु देई ताली, खुले कपाट शब्द झनकारी, पेंड अंड के पार सुदेश हमारा है। इस अंड और इस पेंड के पार वहां हमारा भगवान देश है, और वहां जो धुन हो रही है वो वास्तविक धुन है। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, अब क्या बताते हैं कि कोई है उस परले पार का जो उस वास्तविक धुन की जानकारी रखता हो, तो क्या बताया है, वा रही गोरख वा रही दत्त वा रही धरु पर लाद अर्थ वा रही सुखदेव वा रही व्यास वा रही पारा सर पर काश वा रही दुर्वासा दरवेश वा रही नारद सारद शेष। वार माने इस काल के उरली साइड में, काल वाले पाड़े में बैठे सारे ध्रुव पर लाद जितने नारद सारद सब ब्रह्मा विष्णु महेश गोरख दत्तात्रेय ध्रुव पर लाद दुर्वासा जैसे। वा रही भर्तरी गोपी चंद, भर्तरी और गोपी चंद भी कहते यहीं पर है, मुक्त नहीं है। वा रही सनक सुनो तुन बंद वा रही ब्रह्मा वा रही इंद वा रही सेंस कला गोविंद वा रही शिव शंकर जो संब वा रही धर्म राय आरंभ वा रही धर्म राय धर धीर परम धाम पहुंचे कबीर। रग यदु श्याम अथर्व वेद परम धाम नहीं लहा वेद अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंद सुरती सेव वार पार था ना थे हा ग्रीब दास निर्गुण निगाह। कोई है रे परले पार का जो भेद कह झनकार का। अब स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा वो राजा भूप के समान बैठा है चंवर, जो मुक्त होकर जाते हैं हंस यहां से वो चंवर करते हैं मालिक के सिर पे। और यहां जो यद्रादा स्वामी वाले जो पांचों नाम काल के जाप करते हैं ये देखिएगा, ये पांचों नाम काल के जाप देकर फाइनल कर दिए। देखिए घट रामायण, एक घट रामायण है तुलसीदास हाथरस वाले की, और ये यहां से छपी है वर्ल्ड वियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद भाग एक है, ये यहां से छपी है, ये देख लो। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं, इसमें क्या लिखा है 27 पृष्ठ पे, भेद पिंड और अंड का। कहते हैं अंतर गुफा था चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा बोलिया छठवां नाम गुप्त कर रखा, एक छठा नाम है। पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये पांच बखानी, जीव नाम निज कह विचारी जान बुझ दानी झकमारी। क्या कहता है अब यहां, क्या बताते हैं, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी, कैसे सुरत नृत ले लोक से धाऊं आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम ये सार नाम है, और सत नाम ले जीव उभारी, ये दो अक्षर का सतनाम, और अस चल जाऊं पुरुष दरबार, पुरुष माने परमात्मा के दरबार में ऐसे जाऊंगा। ये तो परमात्मा कबीर जी की वाणी से इस तुलसीदास हाथरस वाले ने अटकलबाजी लाई है, उसको इतना तो पता था ये पांच नाम काल के हैं, और आदि नाम और सतनाम कोई और बालक ने बोले रखा सतनाम आदि नाम, तो इसने इन सोचा जो सत्य नाम है इन तैनारा छठवा नाम, इन पांचा तन्यारा यो छठा नाम सतनाम है और उस तन्यारा आदि नाम है। तो उस हाथरस तुलसीदास वाला भी उसको ज्ञान नहीं था, उसने केवल सतनाम ही सुन लिया कि यू मंत्र और है उन पांचों तन्यारा। इन्होंने राधा स्वामी वालों ने उन पांच नामों में सतनाम जोड़ दिया सतनाम भी जोड़ दिया और सोहम भी जोड़ दिया, उसमें शक्ति शब्द है सतनाम नहीं है उसमें, उन पांच नामों में। तो यहां ये छठवां नाम इन पांचों से अलग, फिर सार नाम और सतनाम, इन से जीव मुक्त होगा, वो पांच तो काल के हैं ये सिद्ध कर दिया तुलसीदास जी ने। अब हम आते हैं, अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं, ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं, इसकी छह पंखड़ी दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है, या लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहां परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था ये मंत्र, तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहां इसका कहा गया। अब यहां देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहां और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये है इस शरीर से, इस पिंड से यहां तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। इस प्रथम मंत्र में अब दो मंत्र और जोड़े हैं दाता ने, अब कंप्लीट कोर्स था, अब बताना था। ये थे पांच नाम जो धर्मदास जी के लड़के चूड़ामणि जी यानी मुक्तामणि जी, जो परमात्मा के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, उसको पांच नाम दिए थे परमात्मा ने, कबीर जी ने स्वयं उसको दीक्षा दी थी और आगे यही दान करने का आदेश दिया था। ये दो मंत्र ऊपर नीचे के नहीं बताए थे, और वो ये पांच नाम थे। आगे चल के छठी पिंडी जब उस धर्मदास के वंशजों की आई, चूड़ामणि जी धर्मदास जी के पुत्र थे, तो छठी पिंडी जब आई उसमें किसी काल के दूत ने, अन्य नकली कबीरपंथी ने उसको विचलित कर दिया, उस महंत को, कि तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की और भक्ति कराते हो इन देवी देवताओं की, तुम कहे के मोक्ष हो गए, तो उस वो विचलित हो गया। उसने कबीर साहब ने कबीर सागर की वाणी में लिखा है, एक महिमा लिखी है पांच नामों की, कि ये मंत्र जो है अजर है, अमर है, अमी है, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही अंश का, वो पूरी आरती गोट ली, वो करण लगे लेब के कहोगे। और कबीर साहब ने कहा था छठी पीढ़ी में तेरी बात बिगड़ जाएगी, ये मंत्र नहीं रहेंगे, काल के दूध से प्रेरित होकर वो विचलित हो जाएंगे, वहां खंड हो जाएगा, ये परंपरा भी तेरी पांच नाम की भी नहीं रहेगी। अब ये अब कंप्लीट कोर्स गरीबदास जी को दिया परमात्मा ने, देखिएगा। अब पहले नीचे यहां तक बरी करते हैं आपको, फिर आगे के मंत्र तीन और बताएंगे, ये देखिएगा। ये भक्ति बोध है जो आप डेली पढ़ते हैं, और इसमें ब्रह्म वेदी है, उसके अंदर गरीबदास साहेब जी ने कंप्लीट बता रखा है, सारा कोर्स बता रखे, देखिएगा। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्मज्ञानी महाधानी सत सुकृत दुख भंजनम। अको परमात्मा सत सुकृत, वो मंत्र तो सबका दुख भजन करने वाला है मूल मंत्र तो, लेकिन ये भी मंत्र है, जैसे आप डेली पढ़ते हैं इसको, देखिएगा। ये है ब्रह्मवेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाधानी सत सुकृत दुख बंधनम। मूल चक्र गणेश वासा है, और रक्त वर्ण झा जानिए किलियम जाप कुलीन तज, किलियम का जाप कर और सब छोड़ दे बकवादों को, शब्द हमारा मानिए। ये इसके साथ हम मिलते चलेंगे सारे के सारे, आप देखिएगा। फिर क्या कहते हैं, स्वाद चक्र ब्रह्म आदि भाषा जहां सावित्री ब्रह्म आ रहे हैं, और ओम नाम जपत अंसा, जपन तंसा ज्ञान योग सतगुरु कह को, सतगुरु होगा जब वो बताओगा ये कहानी तेरे को। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, और हरियम जाप जपा कर हंसा, जपंत माने जपो, और जानत बिरला दास है, एक आधा जाने सारे रहस्य को। हृदय कमल मां देव देव सती पार्वती संग है, और सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बस है विद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही, लील चक्र मद काल कर्म आवदम को फांसी। अब यहां आकर गरीबदास जी ने जान बुझ कर यू अधूरा छोड़ दिया, और फिर ग्रंथ साहिब के अंदर एक स्थान पर कंप्लीट जो का त्यो मंत्र लिखा, यू सातों मंत्र लिखे उस खुशम वेद में गरीबदास जी की वाणी। अब ये तो हो गया कि ये पांच नाम हम जाप करेंगे, तो ये पांच नामों का हम साधना करेंगे, पूजा नहीं है ये। अब हमने इन भगवानों का कर्जा ले रखा या फंस रहे हैं, इनसे लाभ ले रहे हैं, हम ऋणी हो रहे हैं। इस मंत्र से हम इनको इनका ऋण उतारेंगे और ये इन देवताओं के मूल मंत्र है इनसे लाभ लेने के। जैसे एक भैंसा होता है, जोटा होता है, या ये सांड होता है जो जिसको खगड़ बोले हमारे यहाँ आकल कहते हैं, उनका एक मंत्र होता है ना, उसने बहसा बहसा करते रहो कते नहीं सुने। अरे एक बार उसको कह दो हुर्र, वो यूं देखेगा और मनमाने भाग ले उस तरफ, तो बहसा तो उसका अलग नाम है और वो मूल मंत्र है जो उसने पकड़ कर खींचेगा, प्रभावित करता है। तो ये मंत्र मूल मंत्र इन देवताओं के जिनके ये वश है, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देंगे और आपको पूर्ण लाभ देना शुरू कर देंगे। इरादा स्वामी वाले कहते हैं हमारी तो चढ़ाई सीधी त्रिकुटी से शुरू होती है, त्रिकुटी से हमने नीचे से कोई लड़ा दड़ा नहीं, जाने इनके घर का राज है त्रिकुटी, कोई बरवाला का बस स्टैंड नहीं, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल ठा के चला जा, वहां जाने से पहले कर्जा पटेगा तुम्हारा, ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां जाने से पहले पूरी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और फिर वीजा लगवाना पड़ेगा, तब त्रिकुटी पर जाया जाएगा। अब यहां तक तो हम इन सब के प्रथम मंत्र में जो बीच के पांच नाम हैं, जो बीच के पांच नाम हैं प्रथम और लास्ट को छोड़कर, जो सात नाम का आपको मंत्र दिया जाता है, तो इन कमलों से बरी होंगे हम जब आप यहां से चलोगे इस दास के रूप में। आप जब यहां से चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकल रास्ते जैसे अपने आप संकेत होते चलेंगे, इधर आ जा इधर आ जा। जैसे आजकल एक इंटरनेट से चलता है मार्गदर्शक, इसमें मोबाइल के अंदर जहां आपने जाना उस रोड पर भर दीजिए, कहते हैं आगे आगे संकेत करता चलो इधर चल, 20 किलोमीटर ये मोड़ है, 30 किलोमीटर आगे चल, 2 किलोमीटर इधर मोड़, तो उस समय आपके आगे आगे ऐसी इंडिकेशन चलेगी भगवान की, जिनके ये सब मंत्र जाप की कमाई साथ होगी, वो लाकर छोड़ देगा आपको त्रिकुटी पर। अब त्रिकुटी के ऊपर आपका एक रिहर्सल होगा, वहां इस दास के रूप में परमात्मा खड़े पाओगे, बैठे मिलेंगे आपको कई स्टेज पर। और आपको अपने गुरुजी की पहचान खूब होती है और सिमरन आपका साथ होगा, उस तीन मंत्र के जाप का ही आगे काम शुरू होगा। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत् सत वो तीन मंत्र बताए हैं, ओम सर्वपुरुष ब्रह्म का काल का, और तत् ये संकेत ये अक्षर पुरुष का, उसके साथ संग ब्रह्मंडों का किराया देंगे, इसकी कमाई थे। और जो तीसरा सत है वो सार नाम है, उसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक है दोनों सत और तत्, ये है संत मत प्रकाश भाग 4। श्रवण सिंह जी के प्रवचनों का संग्रह है ये। और ये यहां से छपा है, ये देखिएगा 1975 से चला रहा है नौवीं बार 1975 से, और ये यहां से छपा है सरताज प्रिंटिंग प्रेस टांडा रोड जालंधर से। ये देखिए श्री सावन सिंह जी, ये हैं, ये श्री सावन सिंह जी हैं, इनके प्रवचनों का संग्रह है ये। इसके अंदर कंप्लीट इन्होंने से ही लिखा है कि ये सारे हजूर महाराज के सत्संग आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं, 40 साल तक हजारों लोगों ने उन्हें संसार की सब वस्तुओं से बढ़कर माना, हजूर के मुख से निकला हर एक लफ्ज प्रत्येक शब्द उनके शिष्यों के जीवन और प्राण ही बन गया, उनके सत्संग आनंद भोर करते थे, प्राण देते थे, ये सारा कुछ उसी के सत्संगों का इस पुस्तक में दिए गए सत्संग विचारों में हृदय को छूने वाले ज्ञान में गहरे और रूहानी और परिपूर्ण होते हुए हैं, यानी इसके वचनों का संग्रह है। अब इसके 261 प्रश्न ले चलते हैं आपको, ये देखिएगा इसमें क्या लिखा 261 प्रश्न पे। ये वाणी तो इन्होंने दी है शिवदयाल उस नकली वाली, अक्सर पुरुष नृत्य चाली छोड़ दिया देश बिगाना। अब इसको सावन सिंह जी अनुवाद कर रहे हैं, यह संसार छर है, अक्सर है सो पर अक्सर ब्रह्म है। अरे वाह देवता, ये संसार तो सर है और अक्सर वह ब्रह्म है और नी अक्सर पार ब्रह्म है। अच्छा, जब से संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दिया है उन्होंने, एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरफ है, सब कुछ इनके माही, वे अक्षर खिल जाएंगे, ये अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 340 पर ये वाणी लिखी है, और इसमें के लिखा है कि 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन ही माहे, और वे अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इन मनाई। अब इसका अर्थ तो ये है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है उसका अर्थ ये बनता है कि जो मूल मंत्र है जो आपको बताया जाता है सोहम और वो सार नाम, वो इन 52 अक्षर से बनी हुई लिखे हुए यानी वेद गीता और पुराणों में कहता इन में नहीं है वो मंत्र, वो तो परमात्मा खुद लेकर आया था जो मूल ज्ञान है। यह अर्थ इसका ये है, यह अड़ंगा क्या कर रहा है देखिए, ये 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है, पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, पिंड और अंड का, और आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, उसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। देख अडंगा यो क्या कहता है कि 2 अक्षर वो अग है पार ब्रह्म, मरे पाछा पाओगे ऊपर वहां मिलेंगे। सावन सिंह जी कह रहा है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या कह रहा है देखिए, यहां लिखा है इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहा है। ये सावन सिंह कह रहे हैं कि इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, ओए ओए, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे, ओए ओए। अब फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन दो अक्षर दो नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पर ये शब्द लिखा है, और एक ये लिखा है कि जो ये सावण सिंह जी कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे और जो 2 अक्षर का भेद बतावे है, तो ये सावण सिंह और दादा स्वामी वाले तक कोई ना थे, पूरे गुरु नहीं थे, इनको 2 अक्षर का पता ही नहीं, ये तो कहूं पार ब्रह्म है, फिर इनको कैसे पता हुआ 2 अक्षर का, ये तो नकली हुए। अब देखना सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, सो प्राणी निज घर पावे। अब देखो पुणात्माओं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर्के जो तने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, ओम नाम का जाप जितने यज्ञ आदि हैं, वो मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तब मैं तुझे सर्व पापे भा मोक्षामी मासुच, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना कर। तो ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस ब्रह्म को दे देंगे और यू हमने छोड़ देगा तो ओम तो छुड़वाओगा, फिर हम प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मंडों में, वहां जो भौर गुफा में 12वें द्वार पर पहुंचेंगे, वहां तक हम सोहम के उस जाप की कमाई से जाएंगे, अगर सार नाम नहीं है तो वहां बैठे रहेंगे, सतलोक को देख सकते हैं भौर गुफाम से आगे नहीं जा सकते, तो फिर सार नाम वो पार करेगा, उसमें से पार करेगा, वो ठीक ठिकाना दिलाओगा। तो इसमें नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जैसे इस वाणी का ये अर्थ है, देखो सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 2 अक्षर, एक छुड़ावे एक लखावे, ओम त यहां तो छुड़वाओगा, अरसो हम केवल परमात्मा सतलोक को दिखा देगा कि वो ऊपर है लेकिन जा नहीं सकते वहां, वो इससे हटकर जो सार नाम है वो वहां सतलोक में निवास कराएगा। ये देखिए नानक साहिब जी कहते हैं कि जय तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, जेतु पंडा पंडित बिन दो अक्षर दो नावा, इन दो अक्षर दो नामा के बिना तू कुछ भी पढ़ लिया, सारे गीता याद कर ली, वेद गोट लिए, और परणवत नानक एक लंगाई जेकर सत्समा। और जो एक है नहीं, दोनों से नारा, एक तो छुड़ावेगा एक दिखावेगा, और यो पार लंगावेगा तीसरा, इन दोनों से तीसरा, आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1173 पृष्ठ में। फिर कहा है ये अनुवाद श्रवण सिंह का अड़ंगा कर रखा है, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वो अक्षर बताओ, आप उत्तर दे रहा वो अक्षर तो पार ब्रह्म है, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। अकल देखकर मूर्ख है कि वह दो अक्षर तेने को पार ब्रह्म है ऊपर, और फिर वो तुमने के पता दो अक्षर के वेद का। आगे देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाख और होगा खसम तलेगा राख। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। ये क्या कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी के, कहे कबीर अक्षर दो भाख, इन दो अक्षर का जाप कर और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस दो अक्षर के नाम सतनाम को जिसमें कोम और एक दूसरा है तत् संकेत, इसके देने वाला दान करने वाला यदि अधिकारी संत होगा तो ये दो मंत्र तेरे बेड़ा पार करेगा, तेरी रक्षा करेगा, नहीं तो नकली से लेकर वो भी काम नहीं करेगा। देखो कहे कबीर अक्षर दो भाग होगा खसम यानी अधिकारी होगा तो तेरी रक्षा होगी, इसके दो अक्षर के नाम देने वाला। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं एक अक्षर हरिमन वस है नानक होत निहाल, इन दो से नारा एक और अक्षर है। अरे यहां देखिएगा 261 पृष्ठ पर पढ़ दिया संत मत भाग प्रकाश 4 पे, अब 262 पे एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पंड्या मुक्त ना हुई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, एक अक्षर वो सार नाम गुरु से लेकर जो जाप करेगा गुरुमुख होकर, जिसकी निर्मल सोई उसका कल्याण होगा। आगे देखिए नकल इनकी। देखो अब ये श्रावण सिंह बाबा जैमल सिंह के शिष्य, बाबा जैमल सिंह शिवदाल जी के शिष्य, और श्रावण सिंह जी के शिष्य बलोचिस्तानी सावस्ताना खेमामल जी, जिससे इस सरसा के अंदर जो डेरा सत्ता सौदा चला है उसका जो प्रवर्तक थे वो श्रावण सिंह जी के शिष्य थे, और ठाकुर जी ये भी श्रावण सिंह जी के यानी दर्शन उस उसके बाद श्रावण सिंह जी के शिष्य हुए हैं, जो इन्होंने क्या नाम है जो दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेरा बनाया है वो उनके उसके शिष्य हुए हैं श्रावण सिंह, जैमल सिंह के शिष्य थे, सीधे दो तीन अधिकारी थे ये, एक तो श्रावण सिंह जी, एक बाबा खेमामल सिंह जी, और एक वो जिन्होंने दिल्ली में डेरा स्थापित किया मैं उसका नाम भूल गया। तो ये भी यहां सावन तो कहने का भाव यह है कि सारा का सारा ग्रुप एक ही कुएं का पानी है, बाबा जैमल सिंह जी के विचारों से ही खेमामल सिंह जी सच्चा सौदा सरसा बने, वहां उन्होंने स्थापना की और वही उसमें ज्ञान है। तो हमने भी ये देखना है कि इस पूरे ग्रुप ने जिसने सबसे ज्यादा जीवों को घेर कर काल के मुंह में ठोक रखा है, जकड़ रखा है, उनका के ज्ञान है। ये देखिएगा हाँ वो नाम याद आ गया उसका, कृपाल सिंह, कृपाल सिंह जी थे ये, इस किताब में देखा भूल लाग जाए इतना। अब कहने का भाव ये है कि कृपाल सिंह जी और खेमामल सिंह जी ये दोनों अधिकारी मानते थे श्रावण सिंह जी के बाद गद्दी प्राप्त करने के। श्रावण सिंह जी ने दोनों को बाईपास करके एक सरदार जी को उसको अधिकारी बना दिया, ये दोनों ने अपना नारा चमटा गाड़ दिया, खेमामल सिंह जी ने तो सिरसा में और कृपाल सिंह ने दिल्ली में, और कृपाल सिंह का शिष्य फिर ठाकुर सिंह हुआ, और उस शिवदाल जी वाली ब्रांच तली आगरा से ये सारी फैल रही है, फिर वो मथुरा में पहुंचे जय गुरुदेव, वही पांच नाम ये जाप देते। लेकिन सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुराई कर दी, लोगों ने टोक टाक दिया के पांचों नाम काल के जाप करते हो, बात करते हो सतलोक के, तो इन्होंने तीन नाम सिलेक्ट कर लिए, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये जाप है कोई तन्यो बठा बठा दिया काल दे सबका। अब देखना क्लियर होगा। अब देखिएगा, अब यहां हम 262 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, इसके 262 पृष्ठ पर। अब यहां हमारे हैं कि वह अक्षर, ये कहते हैं एक अक्षर जो गुरुमुखदा पैता की निर्मल सोई। अब इसको डिफाइन करने चला सावन सिंह, वह अक्षर आपके अंदर है, यू एक अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजाक मिलेगा, मरे पीछे मिलेगा, भूत बने पाछे, जैसे शिवदाल ने मिल गया वो बुक्की में बैठा है, थरा गजब भैया। सावन सिंह जी कह रहे हैं वो अक्षर आपके अंदर है, वो अक्षर आपके अंदर है इसके बारे में, और पारपुर में मिलेगा। और गुरु नानक देव जी तो कह रहे एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरुमुख होके गुरु जी का शिष्य बनकर उसका जाप करना अर्जुन को पारपुर में मिलेगा। आड़े बकवाद कर रहे, ये धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं है, देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम, हमारे विज्ञानियों, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म सतपुरुष है, यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। फिर देखिए, अब आत्मा पुराने महल को छोड़कर लाखों जन्म जिसमें रही छोड़कर सतनाम सतनाम में जा रही है भैया। अब यह कल देखो, यहां तक कह रहा था सतनाम हमारी जाति है, ये सतनाम जाति हमारी, सतना इवन सतनाम में जा रही है वह तारा गजे भैया, इनका सतनाम में ना सुन मारा भी है, पार कितके होंगे। ये देखिएगा, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सोहम अंदर है, ये अड़ा नहीं बार नहीं है, अंदर है ओम शब्द सोहम शब्द और सत शब्द, आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद को असली देश को जा रही है। इनको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तुनेण चुसुमी, इनको फिर मोतिया बंदरे, बेखों के लश्कर फेरे, ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु परमेश्वर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। परमात्मा की वाणी चुरा ली, उसमें ओम शब्द देख लिया और गीता वाला ओम तत्सतमत ओम देख लिया, कबीर परमात्मा से सोहम ले लिया और वो सत्यों का नो लिख दिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राधा स्वामी वाला ने यू ज्ञान जोड़ा। अब ये देखो, अनजान व्यक्ति लाल कर ठोकर मार रहा है, कहते ये तो अंदर मिल लेंगे अंदर, और वो कह रहे हैं बाहर जाप कर रहे हैं दोनों मंत्र दो अक्षर के। अब आपको दिखाते हैं जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने कौन से मंत्र जाप करे। अब सबसे पहले आपको आदरणीय नानक साहिब जी कौन सा मंत्र जाप करते थे, सतनाम। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे सतपुरुष बेई नदी पे, जब वो स्नान करने गए हुए थे सुल्तानपुर के पास, वहां से परमेश्वर सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, जैसे सभी महापुरुषों को, आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत यूपी वाले को, इन सभी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले और सचखंड लेके वापस छोड़े। परमात्मा ने कहा था कि जो बार में पंथ का प्रवर्तक गरीबदास होगा उस गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी यथार्थ फिर से प्रकट करवाऊंगा। और गरीबदास जी ने क्या कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दातू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। ओए होए, अब नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, उन्होंने खुद कहा गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है, फाई सुरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाणा बहुतावार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है, एक अरज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। 731 पृष्ठ पे लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे और जाकी संगत नानक रेंदा, क्यों कर मुंडा पावे। इसे सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे, इन्होंने कौन से नाम दिए थे इनको, परमेश्वर ने स्वयं एक तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वे दोनों प्रमाणित कर दिया। तो अब नानक साहब जी को कौन सा नाम प्राप्त हुआ था उस परम पिता परमात्मा से, वो देखिए उनकी अपनी जीवनी में। ये है एक जन्म साखी भाई वाले वाली सब तो वड्डी भाई वाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जौहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी ओम सतगुरु प्रसादी यहां है। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन सबसे पुरानी है भाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहेब दी साखी ते दसा पादशां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। अब हम इसके पृष्ठ नंबर आपको ले चलते हैं 547 पर। ये देखिएगा 547 पर, और ये है समंदर दी साखी। अब यहां से पढ़ेंगे हम बाला संधु वाच, बाला संधु के वचन, बालाजी के वचन। ताते गुरु अंगद, गुरु अंगद देव जी को बता रहे हैं और गुरु अंगद देव जी ने ये लिखी थी बाद में। ताते हे गुरु अंगद देव जी, जद गुरु नानक जी अजित्ते कोलों अजित्ते पासों विद्या होए, ता मर्दाने कहा सच्चे पातशाह जी, असा समंदर तो देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा के कहा, चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मिटो जा अखी मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े हुए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखो वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ, ते अगे अगे गुरुजी तुर पए, जैसे धरती ऊपर तुर दे सन उसे तरह समंदर ऊपर तुर पए, जा चले चले जावन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने विचार कीती के गुरु नानक जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जप दे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, लते लग्या गोते खावण, ता गुरु नानक देखण गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं वे देखना, गुरु ते बचना पर चलना, सिसदा चाहिए तू मर्दाना वोहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लग्या वाहे गुरु वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। सिद्ध हो गया नानक जी कौन सा जाप करते थे दो अक्षर का। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी, क्योंकि आजकल पंजाबी पढ़नी बहुत कम है, कोई ना सोचे गुरु जी डांडी मार गए होंगे, हिंदी और दिखा दूं। अब कहते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक मारता है, तो आप दूध के जले हुए हैं, अब लस्सी का भी फूक मार के पीवांगे तो बढ़िया रहेंगे ना, फिर ना कोई भी जागर बोले तो अब आपको ऐसा कर देंगे कि सब शंका निवारण हो जाएगी। देखिएगा ये है भाई वाले वाली गुरु नानक देव जी दी साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है पंजे साहिब और दस बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। ये सारा कुछ देख लो एक बार, ये 2006 का प्रकरण है, 12वां संस्करण है 2006 में तो 12वीं बार छप चुकी है ये पुस्तक। और ये सारा हुआ ही है। भाई चतर सिंह, जीवन सिंह, बाजार माई सेवा, अमृतसर, ये इनके फैक्स फोन नंबर है। और इसमें हम ले चलते हैं आपको 559 पृष्ठ पर, ये देखिए समुन्द्र दी साखी 559 पृष्ठ पे, ये समुन्द्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुन्द्र में जो लंका है वहां भ्रमण किया जाए। गुरु जी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, अक्षण पीछे खोल ले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र के तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहे गुरु जप करते करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है, समुद्र पर चल रहे थे। और आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरुजी के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। और जो दो अक्षर का नहीं जानते वो तो कति नालायक आदमी है, वो कहेंगे सतगुरु फिर। अपने आत्मों, ये कितना गुड़ रहस्य है। परमेश्वर ने सबको हिदायत दे दी थी कि बच्चों अभी इस मंत्र को डिक्लेयर ना करियो। नानक साहिब जी ने बोलकर जाप भी कर दिया, लेकिन ये बोलकर जाप करने का नहीं था, एक झटका देना था कि ये कोई सा बकवाद करेगा तो डूबेगा। तो जिस कारण से पूरे सिख समाज ने इस मंत्र को छुआ नहीं, और गुरु ग्रंथ साहिब में अलग स्थानों पर तो लिखा है ये, लेकिन इकट्ठा नहीं है। तो कहने का भाव ये था कि वो इतने डर गए कि गुरु जी का आदेश उल्लंघन किया था मर्दाना जी ने, वो जाप करने लग गए दो अक्षर का, वो डूब गया होता। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी संग्रह करके लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि यो मंत्र नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा इसका जाप कर ले, गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से दोषी ना हो जाए, जैसे मर्दाना हो गया था, डूब गया होता। तो ये झटका भी देना था, इसको सार्वजनिक भी करना था कि गुरु नानक जी ये मंत्र जाप करती थी दो अक्षर का, सार नाम की तो छींट भी नहीं लागण दी, वो तो अलग है, इस दास के पास है, वो डिक्लेयर करने के लिए, अब खोल लूंगा सारा पिटारा, ये सब फेल हो जाएंगे। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विदे समर्थ है। अब यहां तक का तो हो लिया फैसला, अब तीन मंत्र के जाप का, ओम तत् सत, ओम और तत् जो नानक साहिब जी दो मंत्र का जाप कर रहे थे, यो सत नाम है दो अक्षर का, इसके अंदर जो ओम मंत्र का जाप है त्रिकुटी पर हम इस काल को दे देंगे, फिर हम आगे चलेंगे, परमात्मा आपके साथ रहेगा इस दास के रूप में, फिर हम ग्यारहवां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे, वहां इसके सोहम मंत्र की कमाई इसको दे देंगे, फिर हम आगे पहुंचेंगे बारहवें द्वार पर, वहां ये सार नाम की कमाई जो तीसरा सत मंत्र है उसकी कमाई हमें आगे ले जाकर सतलोक में सत्ताईस स्थान देगी। ये है कंप्लीट कोर्स ऑफ गॉड वर्शिप, परमात्मा की भक्ति का ये कंप्लीट कोर्स है, ये दास के पास है और सबका बेड़ा पार होगा, परमात्मा का वचन है, आओ और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। तो इस पूरे प्रसंग में आज क्या बात सिद्ध हुई कि वो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बोलते हैं अपने मुख कमल से, वेदों से भी प्रमाणित हुआ, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और परमात्मा के पाने के कौन से मंत्र हैं वो आपको स्पष्ट कर दिए परमेश्वर की वाणी से। परमेश्वर ने जो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के द्वारा यथार्थ वाणी बुलवाई उससे, और फिर गुरु नानक साहेब जी से। अच्छा, अब इन मंत्रों का जाप और किस किस ने किया? गरीबदास जी कहते हैं, जैसे दास आपको एक होरी शब्द सुनाता है उसमें सतनाम पालड रंग होरी हो, उसमें ओरिजिनल मंत्र ये है, ओहम सोहम पालड रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब जैसे कहा परमात्मा की वाणी है, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। अब वो राम नाम कौन सा है? गरीबदास जी ने कहा है, राम नाम जप कर थर होई, थर माने सथाई स्थान, अमर लोक प्राप्त करोगे। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओए होए, ये दो अक्षर का मंत्र है, ये है असली राम नाम। ओ हम सो हम मंत्र जपिए, योग युगत या धोणी तपिए, श्वासा पारस भेद हमारा, ये श्वास के द्वारा सिमरण है इनका। फिर क्या बताया है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवाह गमन बहुड़ ना होई। के नामदेव जी पहले ओम नाम के जाप करते थे, उसी को फाइनल मान रहे थे। जैसे परमात्मा के गुणों में आपको वेदों में दिखाया है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, उसके बाद नामदेव जी उस दूसरे मंत्र का भी जाप करने लगा। नामा छिपा, वो छिपी जाति में थे, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, और फिर उसके बाद सार नाम पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। फिर आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिए थे, ओहं सोहं शब्द प्रकाशा। और फिर आदरणीय गीसादास साहिब जी को यही नाम दिए थे, उनका एक शब्द है, ओहं सोहं जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। लेकिन सार नाम परमात्मा इनसे भिन्न है, उसके बिना बात नहीं बने। जैसे ये दो मंत्र का सतनाम बनता है, ये दो अक्षर का, और सार नाम इनसे न्यारा है, तो ये कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, पूरे विश्व का कल्याण होगा जो नाम ले लेगा। आओ, हम पलकें बिछाए बैठे हैं, अपना कल्याण कराओ परमात्मा के बच्चों, बहुत जन्म खो दिए तुमने, समझा है तो सर दर पाओ, भौर नहीं रह सदाओ। और जैसे ये कबीर परमात्मा इस संत मत के प्रवर्तक परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं, ये वैसे तो चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में ये कबीर नाम से आए। तो ये संत मत के प्रवर्तक हैं, इससे पहले कोई नहीं जानता सतलोक और सचखंड के बारे में। ये परमात्मा की वाणी से ज्ञान चुरा कर राधा स्वामी वाले एक शब्द निकाल लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उस हड्डी की गांठ से अपन सारी बन गए, इन्हें कह के भी पता नहीं। परमात्मा कलयुग के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे काशी शहर में लहर तारा तालाब पर, और 120 वर्ष तक रहे परमात्मा। सन 1518 तक, यानी संवत 1575 तक एक लीला करके जुलाहे का काम करते थे, साथ में ज्ञान प्रचार भी करते थे और अपना सब ये ज्ञान सुनाया करते थे, अच्छी आत्माओं को समझाया करते थे। तो कबीर साहब जो हैं ये संत मत के प्रवर्तक हैं, और यही स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है, और वेदों और गीता से प्रमाणित हुआ कि स्वयं वो आते हैं सहसरी, आते सहसरी चले जाते हैं। उन्होंने ऐसी लीला की थी, सहस्री राय थे और मगर से हजारों लोगों के सामने सहस्री चले गए थे। और यही वेद बताते हैं सहस्री आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। और वो ज्ञान इस दास के पास आज विद्यमान है, अपना कल्याण करवाओ और चलो सतलोक चलेंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। सत साहिब, अब आपको दो एक अनुभव सुनाएंगे पुण्यात्मा। ये कोई बार बार समय नहीं मिलता, तपस्वी हजार हजार वर्ष तक शरीर को फूंकते रहे, भगवान मिला नहीं। और यहां तो कोई असुविधाएं को नहीं, बढ़िया भोजन खिलाकर अपने बच्चों को उड़ाकर रजाई बैठा रखा है और ऊपर ते वर्षा अमृत की आत्मा तृप्त हो रही है। कितने दयालु है परमेश्वर, अपने बाप ऐसा होता है जो बच्चों को सब सुविधा देता है और उनके कल्याण उद्देश्य ही रखता है कि इनका सुख हो, इनका मोक्ष हो, इनका भला हो। तो ये उद्देश्य परमात्मा कबीर साहब का ही है, आप उसके बच्चे हो, सारी सुविधा आपको देता रहेगा। लेकिन अब चूकी हो ना इस दाव ने, फिर कदे दाव नहीं लगेगा, बहुत युग बीत जाएंगे। सत साहिब।